ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ತು ಆಜ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ತೀಸರೆ ಸ್ಕಂದ ಕೆ 28ವೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಸೇ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೈನ್. ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ್ ಕೆ ಆದೇಶ್. ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 4. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಂ ಅಸ್ತೇಯಂ ಯಾವದರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ತಪಃ ಶೌಚಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಚನಂ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಯಾವದ್ ಅರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ತಪಃ ಶೌಚಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಚನಂ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಯಾವದರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ತಪಶೌಚಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಚನಂ. ಬೋಲಿ. ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಯಾವದರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ತಪಶೌಚಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಚನಂ. ಮಾತಾಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಪಶೌಚಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪರಿ ಪುರುಷಾರ್ಚನಂ. ಮಾತಾಜಿ ಯಾವದರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಚನಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯ ಯಾವದರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಪಶೌಚಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಚನಂ. ಅಹಿಂಸಾ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠಾ ಅಸ್ತೇಯಂ ಚೋರಿ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಯಾವತ್ ಅರ್ಥ ಅವಶ್ಯಕತಾನುಸಾರ ಪರಿಗ್ರಹ ಸಂಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ तपः तपस्या शौचम शुद्धि स्व आध्यायया वेदों का अध्ययन पुरुष अर्चनम भगवान की पूजा। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करें, वो विषयी जीवन से बचे, तपस्या करें, स्वच्छ रहें, वेदों का अध्ययन करें और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। इस श्लोक में तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषार्चनम शब्द का अर्थ है कि भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के स्वरूप की पूजा करना। भगवद गीता में अर्जुन ने इसकी पुष्टि की है, कृष्ण ही मूल पुरुष है, पुरुषम शाश्वतम है। इसलिए योग अभ्यास करते हुए मनुष्य को अपना मन न केवल कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए लेकिन कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषयी जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषयी जीवन बिताते हुए मनुष्य को योग का अभ्यास, मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। दोबारा पढ़ता हूँ इस बात को, अनियंत्रित विषयी जीवन बिताते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। सब लोग तात्पर्य को ध्यान से सुनिए, ये तो धूर्तता है। तथाकथित योगी ये विज्ञापित करते हैं कि वे इच्छानुसार भोग करने के साथ ही योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु ये सर्वथा अप्रामाणिक है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या कृष्ण भक्ति में जीवन बिताते हैं। लोग विषयी जीवन में अनुरक्त रहते हैं, वे उन विधानों का पालन नहीं करते जो उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर कर सके। विषयी जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद सीमित विषयी जीवन बिताता है उसे भी ब्रह्मचारी कहते हैं। योगी के लिए अस्तेयम शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है चोरी नहीं करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति को जितना आवश्यकता है उतना ही संग्रह करना चाहिए और वो जो नहीं करता है वो चोर है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है, आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता, ये प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वो चोर है। जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह करता है वो भी और बड़ा चोर है। हम लोग हंस रहे हैं लेकिन हमको सबको लागू है ये। स्वाध्याय, इस शब्द का अर्थ है प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। यदि कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे जरूरी है कि वो ज्ञान के लिए आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना पर्याप्त नहीं है, परम भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास जी ठाकुर महाराज कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप तीन साधनों से जाने जाते हैं, साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र और गुरु, यानी कि गुरु, साधु, शास्त्र। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। भक्ति योग के संपादन के हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करते हैं और वो स्वयं शास्त्रों की उद्धरण देते हुए बोलते हैं। अतः योग साधने के लिए आदर्श शास्त्रों का पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है, वेस्ट ऑफ टाइम। हरे कृष्णा। इसके पिछले श्लोक का भी अनुवाद मैं पढ़ना चाहूँगा। मनुष्य को जरूरी है कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का, ध्यान से सुनिए, परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दें और केवल उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जाएं जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए, सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। कल आपने पढ़ा होगा ना इसको, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। कर्दम मुनि और देवाहूति के विवाह का जो प्रसंग है, इस प्रसंग का पूरा उद्देश्य यही था कि कपिल भगवान अपनी शिक्षा देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो सकें और सांख्य योग का दिव्य ज्ञान वो हमको दे सकें। तो इस समय कपिल देव भगवान अपनी माता को उपदेश कर रहे हैं और आगे मैं भूल जाऊंगा इसलिए पहले बता देता हूं कि देवोती माता और कपिल देव, इनका जो संवाद है ये नासिक क्षेत्र में एक जगह है कपिल धारा। आप में से कितने लोग वहाँ गए? उस क्षेत्र में ये संवाद हुआ था और इस संवाद को बड़ी अच्छी भावना से ग्रहण करके देवावती माता सिद्ध हो गई, परिपूर्ण हो गई और नदी रूप हो गई। उसका नाम है कपिला नदी, तो स्वयं देवावती नदी रूप हो गई और वो आगे जाकर गोदावरी से मिलती है तपोवन में, और तपोवन में गोदावरी कपिला का संगम है। उसको त्रिदेव तीर्थ भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मा तीर्थ भी है, शिव तीर्थ भी है और विष्णु तीर्थ भी है, अग्नि तीर्थ भी है। ये चार तीर्थ एक जगह पर है और वो कपिला गोदावरी संगम में है। इसी जगह पर भगवान मूल सीता, जो उनकी सखी हैं, उनकी जो पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं, उनको लेकर आए थे रामायण की लीला में, और अग्निदेव वहाँ प्रकट हुए थे और अग्निदेव को भगवान ने सीता देवी को सौंप दिया था और अग्निदेव ने सीता को लेकर छाया सीता यानी प्रति सीता उसको भगवान राम को दिया था। ये किसी को पता नहीं था, केवल अग्निदेव और भगवान राम को पता था, लक्ष्मण तक को पता नहीं था। लक्ष्मण को भगवान ने तभी वन में कुछ काम करने के लिए भेजा था। तो ये जब लौट के आते हैं तो फिर हरण जो हुआ है वो छाया सीता का हुआ है और फिर यही सीता भगवान ने जब अग्नि परीक्षा करवाई तो अग्नि ने मूल सीता को भगवान को वापस दिया है और छाया सीता को वापस ग्रहण किया है। तो जब सच्चे मन से कोई मुमुक्षु साधक जो होता है, जब गुरु का या संतों का उपदेश ग्रहण करता है तो उसके जीवन में ऐसी परिणति होती है। अभी आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग दूर दूर से आए हैं, आए हैं श्रवण करने के लिए समझे, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ आने के बाद में सो जाएं या मन में और कुछ विचार चले आ जाए या घर में कुछ चल रहा है उसका विचार आ जाए, बिजनेस का विचार आ सकता है या कुछ क्रोध भी आ सकता है किसी बात पर। लेकिन जब हम श्रवण करने को आते हैं तो जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था वैसे हम लोगों को एकाग्र होकर श्रवण करना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी महाराज वैसे श्रवण करने वाले थे, काम कोशी में एक जगह है शेषशायी, वहाँ पर एक बार परम पूज्य परम कृष्ण कृपाश्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक बार आए थे यात्रा लेकर, और उसमें प्रभुपाद जी गृहस्थ अवस्था में थे और काफ़ी सन्यासी काफ़ी शिष्य लोग थे उसके अंदर। लेकिन शेषशाही जगह पर क्या है ना, भगवान जब लीला कर रहे थे तो ग्वाल वालों ने कहा कि अरे आप तो भाई भाव दोनों भाई जो है वो नारायण और शेष के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम तो आपके मित्र हैं, लेकिन नहीं नहीं हम जानते हैं आप स्वयं नारायण और शेष हैं, हमको उसका दर्शन दिलाइए। तो ग्वाल वालों का मन रखने के लिए भगवान ने शेषशाही इस जगह पर अनंत शेष और नारायण का दर्शन दिया, जिस बलराम जी अनंत शेष बने और श्री कृष्ण भगवान नारायण बने चतुर्भुज और लक्ष्मी देवी चरण डुबा रही है, ऐसे सुंदर दर्शन उन्होंने वहाँ पर दिया, तो उस स्थान का नाम पड़ा शेषशाही। तो उसी जगह पर भक्ति सिद्धांत जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, लेकिन जैसे प्रवचन शुरू हुआ सब शिष्य उठकर चले गए शेषशाही का दर्शन करने के लिए और केवल अकेले गृहस्थ प्रभुपाद जी बैठे रहे और पूरा प्रवचन जो है एक व्यक्ति के लिए हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ सडनली सब लोग आप उठ जाते, उठ के चले जाते हैं और एक ही व्यक्ति बचता है और मैं एक ही व्यक्ति को प्रवचन देता हूँ। ऐसे मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, भक्ति सिद्धांत जी महाराज तो सिद्ध महात्मा थे। लेकिन इस दुनिया में लोग कलयुग के प्रभाव से ऐसे रहते हैं, अरे तो हम भगवान भी आके प्रवचन करने बैठेंगे ना, फिर भी उठ के चले जाएंगे मोबाइल कॉल लेने के लिए। ऐसा है, कलयुग की मति ही ऐसी है। लेकिन इस स्थिति में भी जो हृदय से एकाग्र होकर सब कुछ उस समय के लिए बाजू में रखकर अपना चित्त जो है वो एकाग्र कर सुनता है ना, उसको बड़ी दिव्य प्राप्ति होती है। जैसे इस प्रवचन के बाद में भक्ति सिद्धांत जी ने बताया अपने शिष्यों को उसके बाद में कि ये जो अभय है, ये जो भी लिखेगा ना उसको छपवाना, क्योंकि वो बड़ी अच्छी तरह से सुनता है। जो अच्छी तरह से सुन सकता है वही आगे अच्छी तरह से बोल सकता है, जिसका श्रवण श्रेष्ठ है वही उत्तम वक्ता शास्त्र के ऊपर बन सकता है, जिसका श्रवण कच्चा है उसका आगे बोलना भी कच्चा ही रहेगा। और कीर्तन यानी कि प्रवचन यानी कि बोध देना जो है उसके पहले श्रवण आता है। हम लोग क्या कहते हैं, कीर्तनम श्रवणम विष्णु, ऐसे नहीं बोलते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सबसे पहले श्रवण है। आगे जाकर आप मूर्ति की पूजा करोगे, भगवान की विग्रह की सेवा करोगे और मंदिर में ब्रह्मचारी बनोगे और कुछ खाना बनाओगे भगवान के लिए, ये सब बाद में होता है, सबसे पहले श्रवण होता है। अभी आप लोग में से सब लोग अपने आप को पूछिए कि आप लोग इस हरे कृष्णा मंदिर में कैसे आए, आपने सुना पहले कुछ ना कुछ सुना कि भाई एक जगह है वहाँ पर संडे को अच्छा प्रसाद मिलता है, ये भी सुना था आपने पहले। या तो ऐसे कुछ मुझे बताया गया था कि जुहू किनारे में एक संस्था है इसका नाम इस्कॉन है, बोले इस्कॉन का क्या होता है मतलब, वहाँ पर जाओ बहुत अच्छा मार्बल का टेम्पल है और वो बहुत सुंदर वहाँ पर, तो सुनकर ही तो हम प्रेरित हो गए ना गए जाने के लिए वहाँ पर, बोले प्रसाद के लिए सुना होगा या तो कुछ कुछ फिलोसॉफी के बारे में सुना होगा या पहले उन्होंने ले जाने के पहले कमरे में हॉस्टल में कुछ बताया होगा मुझे, है ना। सो सबसे पहला कदम क्या है, सुनना। और जिन्होंने उस समय सबसे पहले अच्छी तरह सुन लिया वो आज मंदिर में बैठे हैं, जिसने उधर ठीक से सुना नहीं कल आर्ग्यूमेंट ही करते रहे, कल सुनने के लिए आर्ग्यूमेंट के लिए सुनते रहे, वो अभी उधर ही हैं जहाँ पर थे। जिन्होंने सुना वो भगवान की ओर चले आए, भगवान ने उनको बुलाया। तो श्रवण शक्ति अच्छी होनी चाहिए और नहीं भी हो तो उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी श्रवण करते हुए भी नींद आती है, और नींद आते समय भी कभी कभी नींद नहीं आती लेकिन बहुत मन में बहुत विचार चलते रहते, एकदम जोरदार चार पांच ट्रैक मन में चलते रहते हैं। तो अगर हमको अपने आप में अगर श्रवण करने में समझो ठीक से नहीं हो जमता होगा तो आयुर्वेद और योग शास्त्र में एक अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया गया है, जिसको सीधे पीठ से बैठकर आप अभ्यास कर सकते हैं। और वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रथम लाभ जो है, कई लाभ हैं, प्रथम लाभ जो है वो मन एकाग्र हो जाता है। और मैंने इसका MBBS के पढ़ाई करते समय पूरा उपयोग किया है, मैं थोड़ा सा अगर थक गया तो मैं मुंह धो के जाकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करता था वज्रासन में बैठकर, और एकदम बढ़िया से मेरा मन एकाग्र होता था। ये तो मैं 25-32 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, और आज भी मैं अभ्यास करता हूँ इस बात का। तो जिसको श्रवण करना है वो ढूंढ के निकालेगा अलग प्रकार के माध्यम कि क्या करूँ, मेरा मन अगर नहीं भटकता भटकते रहता है तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए उपाय है सुनने वाले को। और मैंने एक सुंदर बात सुनी थी, बहुत सुंदर, पहले एकदम विद्यार्थी दशा में, कि व्यक्ति को कैसे सुनना चाहिए। अभी आप सोच लीजिए कि रात के 1 बजे हैं, हाँ, और आपके घर में आप अकेले हैं, 2-3 रूम का फ्लैट है और एक कोने के कमरे में आप एक बेडरूम में सो रहे हो, और अंधेरा है, एक डिम लाइट लगा के रखा है, और उतने में 1 बजे रात को आपको आपके मेन डोर में कोई चाबी डालकर कोई चला रहा है, ऐसा आवाज आता है, कोशिश कर रहा है उसको खोलने की। आपने लॉक किया, डबल लॉक किया, लेकिन वो कोई प्रकार अलग प्रकार की चाबी डालकर उसको कुड़ 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 करके खोलने का कोशिश कर रहा है। तो उस समय वो चाबी खुलने की और खुलने के प्रयास की जो आवाज है वो कैसे सुनेंगे आप? नहीं, बहुत नींद आ रही है, सोने दो यार, उसका अपना काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, मैं थक के आया हूँ, कर भाई अपना, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। ऐसे सुन सकते हैं आप? आपके मन में डर रहेगा, आपके मन में आपके धन लूटने की भी भय रहेगा, आपके मन में शायद जान का खतरे का भी भय रहेगा, क्या होगा आगे पता नहीं है। आप 15 घंटा सफर करके आए, इतना थके हुए, आपके शरीर में एक एक कैलोरी की भी एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी अद्भुत एलर्जी एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी उस समय, और जितनी भी नींद है सब भाग जाएगी। हाँ, और आप एकदम ऐसे सतर्क रहेंगे ना कि कभी नहीं थे पहले सतर्क इतने, वो भी एकाग्र, केवल खिड़की से पर्दे की हवा की आवाज आ रही है, लेकिन आपका कान जो है ना वो केवल चावी की आवाज के ऊपर है। तो वैसे हमको श्रवण करना चाहिए। अभी वो श्रवण वहां पर इतना अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका स्वार्थ वहां निहित है, क्या होगा मेरा घर लूट जाएगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, हर प्रकार की भावना है, स्वार्थ पर आधारित है वो, इसलिए आप जग रहे हो। उसी तरह का स्वार्थी भाव भगवान की कथा के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब आप श्रवण करते हो तो केवल आपके आत्मा का उद्धार नहीं होता है, ये चेतना ही ऐसी है, हाँ, बोलने और सुनने की ये जो क्रिया है ना, ये सब वातावरण को भी शुद्ध कर देती है। एक सुखदेव जी ने गंगा जी के किनारे पे जो कथा की, आज तक विश्व भर को पवित्र कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ? एक घटना घटी, एक शाप मिला परीक्षित महाराज को, और उसके बाद परीक्षित महाराज ने एक निर्णय लिया, उसके बाद एक संत सम्मेलन समागम हुआ, सम्मेलन हुआ, और 7 दिन 7 रात सब लोग ने श्रवण किया, आज तक उसका अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम भी उसी को दोहरा रहे हैं, अनंत काल तक चलता रहेगा ये, अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, और अनेकों अनेकों वक्ता उसको बोलते रहेंगे और लोग सुनते रहेंगे और अपने जीवन का उद्धार करते रहेंगे। तो ये जो भगवान के विषय में चर्चा होती है ना, उसका श्रवण और उसका कीर्तन, बोलना और सुनना बड़ी दिव्य चीज है, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको नित्य नियम से अपने मंदिर में सुबह 1 घंटा रखा उसको, एक श्लोक नित्यम भागवत सेवया। क्या होता है उसे, क्या होता है? भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी, बोलते हैं ना सुबह आप, हम लोग जब ये कथा में बैठते हैं ना, तो इसके हर श्लोक को, हर प्रार्थना को, हर कीर्तन को और दोहराने को मन से करना चाहिए। चलो तो मैंने दोहरा दिया उसको, और कोई ब्रह्मचारी दोहरा रहा है तो मैं ठीक है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, ठीक है, होने के बाद कथा शुरू हो जाएगी। नहीं, इसमें से हर एक क्रिया जो है ना वो महत्वपूर्ण है, राधा माधव से लेकर श्लोक का उच्चारण, श्लोक का पठन, श्लोक का दोहराना, अर्थ का उच्चारण, तात्पर्य का वाचन, हर चीज महत्वपूर्ण है, और हर चीज में देरो जान से, यहाँ तक कि जो कथा कहने वाला है उसको भी राधा माधव कहते हुए राधा माधव कुंज बिहारी इन शब्दों पर ध्यान करते करते गाना चाहिए। और गुरुदेव ने हमको बताया था कि जब प्रवचन में मैंने पूछा था कि आप क्या करते हैं, आप जब भी आप प्रवचन के पहले गाते हैं राधा माधव और बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, इतना आंख बंद करके मग्न होकर करते, क्या करते क्या है आप? गुरु महाराज ने बताया था कि उस समय मैं जो श्रोता है उनके लिए प्रार्थना करते रहता हूँ, उन नामों को, राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, ये सब भगवान के जितने नाम हैं उनके जो अर्थ हैं उन पर पूरा ध्यान करते हुए वो श्रोता में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि इनके उन्नति के लिए मुझे आप बोलने के लिए शक्ति और शब्द दें। तो ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, हर एक चीज में बहुत गहरा मतित अर्थ है और ये बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन उस सिंपल साधारण सामान्य चीजों में जब आप अपना पूरा हृदय लगाते हो ना तो आप उसी सामान्य क्रिया से बहुत दिव्य और अति उत्कृष्ट श्रेष्ठतम अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब अल्टीमेटली चेतना का भाग है, आपकी चेतना का है। जैसे हमारे हमको सबसे पहले कथा में बताया गया था शुरुआत में एकदम कि आपको जब भी कथा में नींद आती है तो आपको खड़े होना चाहिए। आप बोलेंगे अरे बाप रे, अगर मैं खड़ा हो गया तो बोलेंगे अरे वो प्रभु जी खड़े हो गए, मतलब उसको नींद आ रही है। लेकिन प्रेरणादायी चीज़ यह है कि नींद सबको आती है लेकिन एक केवल नम्र व्यक्ति ही खड़ा हो जाता है, अहंकारी व्यक्ति सोते रहता है। बोला सोते रहना अच्छा, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, खड़े होगा तो दिखाई पड़ेगा कि व्यक्ति को नींद आ रही है। लेकिन जो नम्रता से खड़े हो जाता है ना वो सबसे अधिक कृपा उसको मिलती है। आज कहा गया था कि हमको भक्ति के विषय में गहरे मूल्यों का चर्चा करना है, डीप प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशन ऐसे बताया गया था। यही डीप प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत सामान्य हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। डीप प्रिंसिपल ऐसा कोई नहीं कि वो भाई मंदिर में छाटे हुए कुछ पांच भक्तों के एक बंद कमरे में एकादशी के दिन सुबह 3 से 6 तक बताया जा रहा है, ऐसा मत समझना। ये सारे डीप प्रिंसिपल्स हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं और वो सामान्य है वो, और वो सामान्य ही चीज़ें पालन जब हृदय से करते ना तो वो व्यक्ति भगवान की नज़रों से महान हो जाता है। चाहे दुनिया की नज़रों में से वो कुछ भी नहीं रहेगा, वो रहेगा वन ऑफ द डिवोटीज ठीक है, लेकिन भगवान के नज़रों में वही अति श्रेष्ठ भक्त होता है। उसकी मृत्यु के समय पता चलता है कि वो व्यक्ति किस चेतना में था और भगवान ने क्या कृपा किया उसके ऊपर। तो इसी तरह से देवाहुति ने श्रवण किया था। एक तो वो माँ थी और उसको मुमकिन दारे क्या मेरे बच्चे से क्या सुनना है, इसको तो मैंने जन्म दिया है, एक भावना हो सकती है। लेकिन वो जानती थी ब्रह्मा जी की कृपा से कि स्वयं भगवान है और ये तो केवल शरीर का रिश्ता है, टेम्पररी एक ड्रामा का स्टेज है, उसमें मैं माँ बन के आई हूँ और वे पुत्र बनकर आए हैं। लेकिन वो तो लौकिक एक सेटिंग है उसका, जैसे मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं नाटक में रावण का काम करता हूँ, त्रिलोक विजयी रावण, लेकिन वो एक सेटिंग है उसका। घर जाके मैं रावण नहीं हूँ, घर जाके मेरी पत्नी का पति हूँ और बच्चों का पिता हूँ, वापस प्रैक्टिस में वापस रावण, वापस घर में पति। तो वैसे जानती थी वो। तो सत्य के ज्ञान के साथ में एक निश्चय रहना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रधानमंत्री अपनी माँ के मिलने जाते हैं तो वो अपने सर पे हाथ घुमाते हैं उसको वो 101 रुपये भेंट देते हैं बर्थडे के दिन, है ना, तो एक भाव है वो। लेकिन है वो प्रधानमंत्री, देश का नेता है वो, देश का चालन पालन करता है। तो वैसे ही देवावती को पता है कि जो भी है लेकिन ये भगवान है, तो उसने योग्य समय पर शिष्यत्व स्वीकार किया और वो बैठ गई और तब जाकर ज्ञान का स्रोत प्रकाशित हो गया। जब तक अर्जुन मित्र के रूप में ऐसे आर्गुमेंट कर रहे थे तब तक भगवान शांति से स्माइल दे रहे थे, स्मिता हास्य। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम स्यादि मामतम प्रपन्नम, तब भगवान का स्रोत शुरू हो गया, तब प्रकट हुई गीता जो आज भी सब धर्म के लोग पृथ्वी पर और सभी लोकों में उसको उच्चारण कर रहे हैं। और रही बात दो बार बार दोहराने की, क्यों दोहराते उसको, आप अगर पढ़ेंगे ना भागवत महात्म्य गीता महात्म्य तो दोनों शंकर जी ने कहा है, सद्भाग्य से शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं गीता महात्म्य भागवत महात्म्य, उसमें उन्होंने कहा है कि ये भागवत के श्लोक और भगवत गीता का श्लोक 1/4 एक चौथा ही भी आप दोहराएंगे ना अच्छी तरह से, दिल लगाकर अर्थ के साथ समझ के उसको दोहराएंगे तो उतने शब्द ही आपको भगवान को तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं, इतनी पावर है उसके अंदर। और वो 1/4 श्लोक अगर आप समझ कर जीवन में उतारेंगे तो वही आपको अपने भक्ति के चरम स्थिति जो है वो प्राप्त करने के लिए योग्य बना देते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि माता जीज प्रभु जीज, तो अगर आप उसको एकदम हृदय से पढ़ेंगे ना तो वही आप एकदम 4th गियर में जाएंगे भगवान के पास। प्रभुपाद जी का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 64 भक्ति के तत्वों में से 42 तत्वों का पालन केवल मॉर्निंग प्रोग्राम में होता है। ऐसा फैंटेस्टिक पैकेज बना दिया है उन्होंने, पहले मंगल आरती, उसके बाद में नरसिंह आरती, उसके बाद में तुलसी आरती, उसके बाद में शिक्षाष्टकम, उसके बाद में दश अपराध, उसके बाद में जप, उसके बाद में दर्शन आरती, उसके बाद में गुरु पूजा, है ना, वो तुलसी आरती में प्रदक्षिणा सब है ना, उसके एक एक आइटम में भी और आइटम है। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत का श्रवण, बीच में कीर्तन, 2-3 बार बीच में कीर्तन आता है, और फिर बैठना, और फिर नमो भगवते वासुदेवाय, फिर भागवत सुनना, फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर, फिर उसके बाद में प्रसाद, फिर उसके बाद में अपने काम के लिए जाना। ये सारे मिलकर 42 तत्वों का पालन होता है उसके अंदर। तो अगर कोई श्रेष्ठ गुरु के द्वारा बताए गए नियम का अगर बिना समझते हुए भी पालन करेगा, वैसा नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन ऐसे भी पालन करेगा ना, मैकेनिकल बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी अभी दंडवत कर रहे हैं, अभी हम करते हैं ना, अभी गुरु पूजा हो गई फिर दंडवत किया, भगवान का दर्शन हुआ फिर दंडवत किया, फिर फूल अर्पण किया फिर दंडवत किया, फिर उठे, फिर वांछा कल्प तरुवश्य, उसमें भी आता है ना बीच में, एंड में मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो ये सारे जो है ना, वो जाने अनजाने में करेंगे ना, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कैसे आप प्रगति कर चुके। तो जब समझ आएगी बच्चों को तो उधर से ही वो पिकअप करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि बालकों को अगर आपको संस्कार देना है तो उनको रोज दर्शनार्थी में लेके आना, बिना मंगल आरती में नहीं जमता है उनको, अगर नींद उनकी टूटती है, सर दुखता है उनका, रोते हैं बच्चे, दर्शन आरती में तैयार करके उनको लेके आना, कुछ करने की जरूरत नहीं, बच्चा खड़े गोद में है बस, सो भी रहा है समझो कंधे पर, फिर भी वो चल रहा है ना, जो गोविंद माधि पुरुषम फूल, माता फूल अर्पण कर रही है, फिर आगे जा रही है, फिर वहाँ फूल अर्पण कर रही है, सब लोग अर्पण कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो ही इतना गहरा संस्कार है, वही इतना गहरा श्रवण है बालक के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं स्लीप टॉक हमारे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। वो जो स्लीप टॉक है ना, वो भी इतना प्रभावशाली है, जो सो रहा है बच्चा लेकिन फिर भी वो दर्शन आरती का सब आनंद ले रहा है, वो जो संस्कार है वो इतना गहरा है कि जो समझदारी की उम्र में आएगा ना, तो एकदम वो तुरंत वहाँ से पिकअप करेगा। वो हम लोग तो ABCD में करेंगे, वो तुरंत वहीं से पिकअप करेगा, क्योंकि उसने बचपन से सुनते आ रहे हैं वो जो अनजान संस्कार हो रहा है, जिसको आप अभी लेख नहीं सकते क्या क्या संस्कार हो रहे हैं, मालूम नहीं आपको अभी, लेकिन वो जो गहराई में संस्कार होते हैं ना, वही आदमी को भगवान की ओर ले जाते हैं। और ये माता पिता का परम कर्तव्य है कि हमारे संतान को भगवान की ओर ले जाए, और सुनने के लिए सिखाना चाहिए बच्चों को, टू लिसन, टू सिट एंड लिसन, कुछ देर के लिए ऐसे पांव फोल्ड करके बैठ के आँख बंद करके बैठने को सिखाना चाहिए, एकाग्र होने के लिए, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, हमारा भी होता है, बच्चों को नहीं होता है लेकिन बच्चे लोग फिजिकली भी बहुत चंचल रहते हैं, हाँ भागते रहते हैं, बैठ नहीं सकते, तो उनको दिन में कुछ समय तो 5 मिनट बैठने को सिखाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उसको भक्त बनना है, आगे जाकर भगवान की बातें श्रवण करनी है, गुरु की बातें श्रवण करनी है, भक्तों की बातें श्रवण करनी है उसको, तो अभ्यास उसको करना ही करना है, केवल पढ़ाई करके डॉक्टर बनने के लिए नहीं करना है कि अच्छे कमाए पैसे उसके लिए। तो ये सुंदर तरीके से श्रवण करने का परिणाम देवाहुति का उद्धार हो गया है ना, सारी सेवाएं कर्तव्य को निभाते हुए उसने अंतिम पिता की, पति की इतनी बढ़िया सेवा की, पुत्री होने के नाते संतों का संग किया पिता के घर में, फिर सारे स्थितियों को एक्सेप्ट किया जैसे पति की थी, वह स्थिति में अपनी शरीर का न ख्याल रखते हुए पति की सेवा किया, फिर पति के द्वारा 9 सुंदर ऋषि कन्याएं और पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर स्वयं भगवान प्राप्त हुए, अब भगवान प्राप्त हुए उनके मुख से उपदेश सुनकर वो सीधे भगवत धाम चले गए। कितना सुंदर यात्रा है देखो आप, ये कितना सुंदर प्रवास है। तो चाहे आप राजकुमारी या राजकुमार की तरह जन्म ले या न लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपकी चेतना और आपकी यात्रा कैसी है उसके ऊपर डिपेंड है। वो थी तो राजकुमारी, पैर भी रखे जमीन पर रखे नहीं थे उसने, लेकिन वन में रही हो, कोई इमेजिन करेगा क्या जब जन्म में देखेंगे तो, शादी की बात, ये लड़की नंगे पैर जंगल में घूमने वाली है, आज राजकुमारी है 25 साल के लिए, लेकिन सारी चीज़ें मुमकिन हो गई उसके लिए, क्योंकि उसकी चेतना सही जगह पर थी, परफेक्ट। इसलिए भगवान के द्वारा दी गई हर स्थिति को वो एक रेडी कृतज्ञ भाव से स्वीकार करती रही कि थैंक यू। संघर्ष नहीं किया उसने, झगड़ा नहीं किया पिताजी के साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे कोई राजकुमार ढूंढ के दिखाई जो भक्त भी हो, हम लोग कैसे ढूंढते हैं अपनी लड़की के लिए कि भाई भक्त होना चाहिए, और उसका व्यवसाय भी ठीक से, अपना घर होना चाहिए खुद का, ये हम भी देखते हैं ना कि नहीं, लेकिन गुरु जी की ऐसी इच्छा रहती कि भक्त पहले देखो, बाद में फिर जाति पाति धर्म जो है वो सब बाद में देखो, पहले भक्त होना चाहिए, भक्त होना बहुत जरूरी है। कर्दम मुनि अमीर नहीं थे लेकिन भक्त थे भगवान के, इसलिए देवादत्त के जीवन में ये आप अंजाम देख रहे हो। अगर कर्दम मुनि कोई होते बिजनेसमैन या कोई देवता होते, कोई ऐसे प्रजापति होते तो आपको कुछ अलग दिखाई पड़ता, क्योंकि दक्ष प्रजापति थे, उनके जीवन में शिव जी का अपराध हुआ, उनके जीवन में यह हुआ, उनके बहुत सनसनाहट खेज घटनाएं हुई। कर्दम मुनि के जीवन में कोई घटना दिखती क्या आपको? एक ही घटना दिखती है कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं, देवावती उनकी सेवा कर रही है। फिर ध्यान से उठे तो एक साथ नौ कन्या, उसके बाद भगवान को जन्म दिया, चले गए। मतलब ब्रीद क्या है उनके जीवन का? भक्ति। वो 100 स्वर्गीय वर्ष अपने हवा महल में रहे लेकिन उनको उनके उसमें कुछ आसक्ति नहीं थी, अगर थी तो वो वही टिके रहते। बोलते इसी महल में कुटी बनाऊंगा, वहां पर ही भजन करूंगा, मेरी इतनी बढ़िया कुटी है, छोड़ के कैसे जाऊंगा, इतना मैंने मेहनत से बनाया उसको, इतने साल तपस्या किया, सिद्धि को प्राप्त किया और बिना ब्रह्मा जी के कोई तत्वों को लेते हुए मैंने हवा महल बना लिया, तो अभी मैं छोड़ नहीं सकता इसको। है नहीं, कुछ नहीं, जरूरी था उसका यूज किया, छोड़ दिया उसको, चले गए अपने आम काम के लिए। मतलब हर अवस्था में बहुत एकदम ऑपुलेंट यानी कि ऐश्वर्य संपन्न अवस्था में थे ना वो, जब वो हवा महल में थे, और शरीर को भी उन्होंने चेंज कर दिया था उस समय योग बल से। इतना होने पर भी उनका चित्त जो था वो भगवान में स्थित था, उसका ही प्रूफ है ये कि वो होते ही काम चुरंत चले गए, वो वापस उसी अवस्था में चले गए। हम लोग अगर समझो एक वन रूम किचन में रहते हैं जो 370 स्क्वायर फीट में, और फिर धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वन बेडरूम में जाते हैं, उसके बाद टू बेडरूम में जाते हैं, फिर और भगवान की कृपा होती है तो हम लोग 4 बेडरूम का एक बढ़िया सा प्लॉट लेकर घर बांधते हैं, और फिर नुकसान होता है, बहुत लॉस होता है और हमको बेचना पड़ता है, तो हम बोलेंगे अभी वापस वन रूम किचन में जाना पड़ेगा। पता है कितना कष्ट होगा हमको 4 बेडरूम वाली स्थिति में से दोबारा वन रूम किचन और लैट्रिन टॉयलेट बाहर ये स्थिति में जाएंगे, तो आप बोलेंगे 25 साल तो बचपन में उसी स्थिति में था हमें, लेकिन 15 साल के बाद में वापस उस स्थिति में जाने के लिए कितना कष्ट होता है। किसी ने अनुभव किया इसको? होगा अगर ऐसे समय आएगा तो यू वोंट बी एबल टू एडजस्ट, लेकिन किसी भी बिना कष्ट के प्रयास के सहजता से कर्दम मुनि अपने झोपड़ी में दोबारा गए जंगल में, और फिर उनका बाद में वर्णन नहीं आता है, बाद में यह वर्णन आता है, मतलब ऐसे ही उनकी जिंदगी चलती रही अंत तक। हम लोग भक्ति की गहराई की चीज बात करते हैं ना, भक्ति की गहराई एक ही है, एकमात्र गहराई सबसे पहली, हाँ गहरोत्तम मतलब सबसे नीचे गहराई एक ही है, भगवान का जो चित्त लगाना है भगवान के ऊपर वो हमेशा कायम रहना चाहिए, हमेशा। आप किसी भी स्थिति में हो, शरीर की बुरी स्थिति में हो, जन्म अच्छे यौवन स्थिति में हो, वैवाहिक स्थिति में हो या अविवाहित हो, धनवान हो या गरीब हो, गांव के हो या शहर के हो, हाँ बहुत बड़े पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, या कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, किसी भी स्थिति में ये न किए न प्रकार मन का होना चाहिए, मन कृष्ण निवेशयेत, सदैव हमारा चित्त जो है वो बैकग्राउंड में कृष्ण में ही स्थित होना चाहिए। हमारे गुरुजी, शायद मैंने पता नहीं बताया कि आपको, हमारे गुरुजी उनके यात्रा में एक समय पे एक साधु को मिले, वो साधु त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया उनके बारे में, लेकिन उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात बताई कि भगवान नाम और भगवत चेतना यही सर्वस्व है जीवन का, कुछ भी करो, योग साधना करो, किस प्रकार की भी साधना कर सकते हो, लेकिन भगवान नाम सारे साधनाओं का मूल है। और उन्होंने कहा उठते बैठते खाते पीते सोते काम करते क्रिया करते मनोरंजन करते जो भी करते कर्तव्य करते हुए सब कुछ करते हुए भगवान का चिंतन बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, नामस्मरण। ये तो एक लाइन ही लाइफ टाइम अचीवमेंट का काम है, ये एक लाइन जो है वो आपके जीवन का मिशन हो गया पूरा, इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो मैंने कुछ उनको कुछ बोल दिया तो उनको गुस्सा आया, तो गुस्सा होता ही डिस्कनेक्ट भगवान से, हो गया ना, फिर जब गुस्सा ठंडा होगा तो अरे ये मैं इतना गुस्सा करके ये 20 मिनट क्यों बर्बाद किए मैंने, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन भक्त यही कुशलता में निर्भर रहता है, इसी कुशलता को प्राप्त करता है, कुछ भी हो अपना जो बेसिक लाइन है ना वो देखता है कि अभी इनसे झगड़ा करके क्या मिलने वाला है, उस समय उतना समय मेरा भगवान का चिंतन खत्म हो जाएगा, छोड़ो ना उसको, ठीक है 2 गाली दिया उसने, फॉरगेट इट, मैं उसको जवाब दूंगा, वो जवाब देगा, मारा मारी करेंगे, उतना समय मेरा भजन नष्ट हो गया। तो जो भक्त होता है ना, वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो कभी भी कोई क्षण जो है ना वेस्ट नहीं करता है। मालूम है इतने क्षण, कीमती क्षण है ये, मैं वेस्ट करूँगा इसको, उनको जवाब देने में वेस्ट करूँगा तो मेरा उतना समय भजन खत्म हो जाएगा, इसलिए चलने दो, फॉरगेट इट। भगवान का ध्यान जो चल रहा है उसको भंग मत करो। कितनी उच्च चेतना है ये, हम सब लोगों को देखना है। ये क्या लिखा है ये पिछले श्लोक के इसमें, परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग करके केवल उन प्रथाओं में अनुरक्त होना चाहिए जो भगवान के प्रास हमको ले जा सकते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भी आपको छोड़ देना है एक समय पर, क्योंकि धर्म भी अगर आपको भगवान से मिलने के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं। धर्म का काम होता है लेकिन अंदर से नुकसान होते रहता है। आप बोलते अरे वो गणपति का कितना बढ़िया उत्सव किया हम, लेकिन रात को ताश खेलते रहते हैं, पैसे का अपव्यय करते हैं, इधर उधर गड़बड़ कर देते हैं। तो काम तो धर्म का हो रहा है लेकिन साथ में उसका नुकसान भी साथ में कर रहे हो। तो धर्म ही कभी कभी कई बार चेतना गलत होने से अधर्म का परिणाम देता है। धर्म अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। धर्म जब भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो परिपूर्ण है। तो कभी कभी धर्म का इस्तेमाल लोग पैसे कमाने के लिए भी करते हैं ना, यशस्वी होने के लिए भी करते हैं, कीर्ति कमाने के लिए भी करते हैं। धार्मिकता से अगर मैं कीर्तिमान हो सकता हूँ तो भी धर्म का मैं दिखाऊंगा कि मैं भी बड़ा भक्त हूँ, बड़ा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महात्मा हूँ। और मेरी कथा यहाँ पर हुई थी, उसमें 200,000 लोग आए थे। तो इसमें अपना ही जो यश कीर्ति पैसा लगने में बिजी रहते हो, और पालन किसका करते हैं, धर्म का। तो धर्म क्या हुआ, अधर्म हुआ। धर्म स्वनिष्ठता पुंसा विश्वक से न कथा सोया। धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब है भगवान की प्राप्ति करना। और अगर वो धर्म के नियमों का पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर आप नहीं है तो वही धर्म आपके लिए अधर्म बन रहा है। मोक्ष की प्राप्ति फॉर एग्जाम्पल, मोक्ष बहुत बढ़िया है, बहुत सब दुनियादारी छोड़कर हमको मोक्ष प्राप्त करना है। सब संत लोग लगे हुए हैं, तपस्वी लोग लगे हुए हैं दुनिया से विरक्त होकर, कितनी श्रेष्ठ गतिविधि है। लेकिन वो भी एक स्वार्थी गतिविधि है कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, बाकी किसी का कुछ भी हो, भगवान प्रसन्न हो नहीं हो उसमें कुछ लेना देना नहीं। मुझे धर्म की विधि पालन करके भगवान, मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवान के लोक की प्राप्ति और जन्म मृत्यु से मोक्ष मिलना चाहिए। ये भी एक सीमित दायरे में की हुई बात है। और कभी कभी कुछ लोग में देखे हैं, भक्त लोग ऐसा कॉन्स्टेंटली भागवत में प्रवचन पुष्ट रहे थे कि गुरु महाराज अभी आपने इतना सुनाया इतना किया, लेकिन ये करने के बाद में फिर मोक्ष मिलेगा ना, मतलब आपको पूरा गारंटी है ना कि इतना सब करने के बाद में एक दिन हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, गारंटी है ना। इतना देर ऑब्सेस्ड विद द थॉट कि मेरे को निकलना है यहाँ से। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, और जैसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए हम काम करने में मग्न हो जाते हैं तो मोक्ष की चिंता आपके ऊपर से निकल कर भगवान के ऊपर चली जाती है। इसको मुक्त करना है वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उसके लिए भक्त को अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक बार बालक अगर माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करता है तो उसको वो आज्ञा का पालन करते हुए बार बार पूछना नहीं पड़ता है, मम्मी अगले टर्म की फीस भरोगी ना, अगली बार जब जूता टाइट होगा तो नया जूता लाओगी ना, दफ्तर फट जाएगा तो नया दफ्तर लाओगी ना, ऐसा अलग बार बार पूछना पड़ता है क्या? एक बार पिता माता के आज्ञा पालन में बच्चा आ गया तो उसको हर बार उसके हित की बात बार बार पूछनी नहीं पड़ती है, वो तो अश्रद्धा की बात हो गई। लेकिन आज्ञा पालन कर ही रहा है कि उसको श्रद्धा है, इसलिए सारे उसके जो योगक्षेम है वो माता पिता अपने आप पूरे कर रहे हैं। बेटी को पूछे बिना बैकग्राउंड में लड़का वड़का देखने की तो काम चलते रहता है, आपने किया होगा ना ऐसे, बेटी तो पढ़ रही है लेकिन अपना होमवर्क आपका ऑलरेडी चल रहा है और एक दिन फिर वो होमवर्क का रिजल्ट प्रकट होता है और शादी हो जाती है। बच्चा सो रहा है रात को और माँ ने मच्छरदानी रखी हुई है और वो देख भी रही है कोई बिच्छू तो नहीं आ रहा है, कोई सांप तो नहीं आ रहा है, कोई गांधी मछली तो नहीं आ रही है, मधुमक्खी तो नहीं आ रही है। बच्चा एकदम गहरी नींद में सो रहा है, 15 घंटे सो रहा है, तो उसको उठ के जगाती नहीं है, हे उठो देखो तुमको मैंने अभी सांप से बचाया है, पता है तुमको मैंने बिच्छू से बचाया, अभी तुमको बिच्छू काटने वाला था, पता है तुमको इतने मच्छर थे मैंने इनको जाली रखी है। तो वो अपने आप हो रहा है, उसको बच्चे को पता भी नहीं क्या कल्याण हो रहा है उसका। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान के आदेशों को जो गुरु के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं उनको पालन करने में मग्न हैं, उनको कभी चिंता की आवश्यकता नहीं होती है कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे लिए अच्छा क्या होगा, कौन सा वैकुंठ अच्छा रहेगा कि वो लोग अच्छा रहेगा ये सारे विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। उसके लिए क्या योग्य है वो भगवान अपने आप करते रहते हैं, और वो भी उसमें मस्त रहता है। वो बोलेंगे तुम गोलोक मत जाना, तुम ना दोबारा आना और ये वही ये लोक में जाकर वहाँ प्रचार करना। बोले ठीक है। वो क्या बोलते हैं, मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतात भक्ति राय तो की त्वई, कहीं भी रखो, स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, इसमें रखो, उसमें रखो, आपके भक्ति में रखो, बस वही हमारा गोलोक धाम है। जहाँ उनकी भक्ति मेरे हाथ से हो रही है वो मैं गोलोक धाम में उधर ही हूँ, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है केवल उन्हीं कार्यों का आचरण करो जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए जुड़े हो, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के कैटेगरी में काम मत करो, क्योंकि वो आपको बांध देगा अगर आपकी चेतना उसी में लगी हुई है। और अर्थ और काम के बारे में बात नहीं करूँगा ही नहीं मैं, क्योंकि वो अर्थ जो है वो आपको फंसाएगा। अगले श्लोक में अर्थ के बारे में बात की है। परिग्रह, परिग्रह का मतलब क्या है, जरूरत से अधिक संचय करना। ये धन जो है ना वो कलयुग का एक स्थान है, कली का एक स्थान है, क्या कहते हैं उसको, आसन है वो, इस पर कली जीता है, कली का घर है वो। क्योंकि जब परीक्षित महाराज ने उसको बोला जाओ जहाँ पर मांसाहार व्यभिचार नशा जुआ हो रहा है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर रहो, तो बेचारा लौट के आया, बोला आपके आपके राज्य में किधर भी ये चार काम नहीं होते, तो मैं कहाँ रहूँगा। तो फिर उन्हें कहा कि जाओ जहाँ पर एक्सेस धन है ना उधर चले जाओ। तुरंत बहुत जगह मिली उसको, पहले जगह ही नहीं थी, अभी जगह ही जगह मिली। इसका मतलब जहाँ पर जरूरत से अधिक धन संग्रहित है वहाँ पर कली है। जब भाई वो गरीब होते हैं ना, चार भाई है घर में, दो बहनें हैं, तीन बहनें हैं, सात बच्चे हैं, माता पिता दादा दादी रहते हैं, सब लोग गरीब रहते हैं झोपड़ी में, बड़े प्रेम से खाना खाते हैं, आधी आधी रोटी बांट के खाते हैं। जैसे ही सबके पास धन आने लगता है तो छः छः महीने में भी एक बार नहीं मिलते हैं, दिवाली को भी नहीं मिलते हैं, सोचते हैं अभी इनको सबको बुलाऊंगा तो 15 लोग का खाना बनाना पड़ेगा, इतने खर्चे होंगे, तो सोच रहे हैं कि तू ही होस्ट कर लेना, मैं तुम्हारा बिजी हूँ, बाहर का हूँ, तू होस्ट कर लेना। मतलब जैसे धन अधिक आता है ना, प्रवृत्ति हमारी और विस्तृत होने के बदले में संकुचित होती जाती है। जब धन नहीं होता है ना आदमी दिलदार होता है, आओ भाई खाना खा के जाओ, ये करो, गिफ्ट देता है, क्योंकि उसको ज़्यादा धन का जो मज़ा है ना वो उसको पता नहीं रहता है। आसक्ति क्या हो धन में उसको पता नहीं, तब तो धाई नहीं तो आसक्ति कैसे होगी। लेकिन जैसे धन आता है तो उसका एक प्रभाव उसके मन पर रहता है, और इसलिए अधिक धनी व्यक्ति है ना अधिक कंजूस होता है, हमेशा अधिक संचयी प्रवृत्ति का होता है। अब गरीब व्यक्ति हमेशा दिलदार होता है, अब जाओ गांव में जाओ आपको तुरंत वो कलिंगड़ काट के देंगे, 4 मैंगो देंगे, इधर 50 बेलफल देंगे, दिल उदार रहता है। एक बार धन रूपी यानी सोने की मोहरे या नोट या करेंसी आ गया ना तो मन आसक्त हो जाता है। इसलिए अगर आपको धनी बनना बेकार गलत बात नहीं है, पांडव लोग भी बहुत धनी थे, अम्बरीश महाराज भी बहुत धनी थे, परीक्षित महाराज भी पूरे विश्व के मालिक थे। अरे हमारा धन क्या होता है, हम तो एक गांव के मालिक भी नहीं है, तो पूरे विश्व के मालिक थे, इतना धन रहेगा उनके पास, कितना यश कीर्ति रहेगा, लेकिन वो सब चीज उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था, इसलिए वो धन का विपरीत परिणाम उनकी चेतना पर नहीं हुआ। और हम सब लोग गृहस्थ लोग हैं, हमारे जीवन में धन है, कम अधिक मात्रा में है, और वो कम अधिक मात्रा में क्यों ना हो हमें आसक्ति दिलाएगा, स्वार्थी बनाएगा, संकुचित प्रवृत्ति का बनाएगा, और फिर हमारे लक्ष्य से हम दूर हो जाएंगे। नाम के लिए भक्त थे हम, दीक्षित थे, सब कुछ करते थे, नियम पालन करते थे, लेकिन रह गए इधर ही, क्योंकि हमारे शरीर के लालन पालन के बाद में जो एक्स्ट्रा धन बचता है वो अगर भगवान की सेवा के प्लानिंग में नहीं है, वो केवल खुद के लिए है, तो ऐसे कहते हैं पैसा जो है ना वो हमको सड़ा देता है, पैसा खुद सड़ता है और हमारी चेतना को भी सड़ा देता है, चेतना गेट्स प्यूट्रीफाइड, चेतना दूषित हो जाती है। तो धन जो है वो उसको हमेशा भगवान की सेवा में रखने का ही प्लानिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले वो संचय करने के पहले, FD में डालने के पहले, सबसे पहले उसका जो 10% 20% का हिस्सा जो है वो आते ही हर महीने में भगवान की सेवा में दान देना चाहिए, ताकि आप जो रोटी खा रहे हो वो रोटी भी शुद्ध हो जाएगी उससे, क्योंकि धन कमाने में जो भी कुछ यहाँ वहाँ होता है गड़बड़ वो नियमित दान देने से शुद्ध हो जाता है। और आप जो रोटी खिला रहे हो और खा रहे हो घर पे, उसका परिणाम बच्चों के और आपके चेतना पर अच्छा होता है। ये धन के विषय पर बहुत घंटे बात कर सकते हैं, धन बहुत डेलिकेट चीज़ है लाइफ में, धन के लिए क्या नहीं होता है, धन के लिए भक्त भाई भाई भी अलग हो जाते हैं, झगड़ा करके कोर्ट में खड़े रहते हैं, भाई भक्त लोग दीक्षित लोग, इतना धन प्रभावी है, किसी को छोड़ता नहीं धन, होगा महात्मा धन में लग गया तो फिर गया काम से वो। भक्त का लक्षण वही है कि वो इन चीजों पर आसक्ति रखता नहीं कभी भी, उसकी श्रद्धा जो है वो भगवान पर होती है और भगवान की कृपा पर होती है, और एक समय पर वो लॉस सहन करेगा लेकिन भक्तों के बीच में कभी भी वो झगड़ा होने वाले चीज़ों को टाल देगा, वो बोले ठीक है अपना नुकसान होगा चलेगा, लेकिन रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मैं धन के लिए झगड़ा करूँगा तो एक भक्त मेरे जीवन से कट हो जाएगा, और मेरी मौत के समय जब करने वाला कौन है, भक्ति तो है, आपके 50 रिश्तेदार हैं और भक्त नहीं है तो आप मरते समय वो खाली आके रोएंगे आपके लिए, बोलेंगे कैसा हुआ, सुबह तक तो अच्छे थे और अभी क्या हुआ, उन्हें पानी पीने गए उधर गिर गए, यही चर्चा करते रहेंगे। वो बेचारा आत्मा बोल रहा है प्रार्थना करो मेरे लिए भगवान के लिए, मैं मर रहा हूँ अभी, मुझे भगवान को मिलना है, लेकिन वो नहीं करेंगे, कितना भी प्रेम करेंगे रोएंगे और बाल्टी भर के अश्रु बहाएंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन दुश्मन भक्त शत्रु भक्त होगा ना आपका, वो भी आप मरते होंगे तो दुश्मनी भूलकर कान में आके भगवान का नाम जप करेगा। इसलिए ये जानते हुए भक्त जो है वो अगर पैसे का गड़बड़ होते हुए भक्तों का रिश्ता खराब होते हुए नजर आएगा ना तो तुरंत वो बोलेगा ठीक है नुकसान ठीक है इट्स ऑल राइट डजंट मैटर, पैसे तो जाते आते रहेंगे, क्या जिंदगी में पैसा किसके पास टिकता है, आज है उदय नहीं ऐसा मनते ना गाँव गाँव का मनते हैं, अरे पैसे से काय कौन बसला है आज है उदय नहीं बहुत बड़ी बात है वो अगर आप बोलने के बजाय समझेंगे उस बात को तो फिर हर रिश्ते आपके बच जाएंगे। तो परिग्रह, परिग्रह मतलब बिना भगवान की सेवा के योजना के अंतर्गत धन का संचय नहीं करना चाहिए, अगर धन संचय भी कर रहे हैं उसका प्लानिंग होना चाहिए, ये बुढ़ापे के लिए, ये बीमारियों के लिए, इमरजेंसी के लिए, और ये आगे जाकर मैं उसको नियमित रूप से डोनेशन के लिए, ऐसा करके प्लानिंग होना चाहिए, तब जाके वो धन आपके चेतना पर विपरीत परिणाम नहीं करेगा। और धन ऐसी चीज़ है कि वो आदमी कितना भी बड़ा संत रहेगा अगर धन में उसकी मन है तो वो उसकी विपरीत परिणाम उसकी चेतना पर करेगा ही करेगा, वो क्योंकि वो एब्सोल्यूट पावर है। यू कैन नॉट से कि मैं अब ऐसा योग करता हूँ कि धन मेरा ऊपर परिणाम नहीं करेगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। धन का लालच किसको छूटा है, कि हमारे प्रभुपाद जी महाराज कहते थे कि आप अगर मुझे 1 लाख दोगे तो मैं पूछूंगा अगला लाख कभी दे रहे हो, तो ले क्या महात्मा है ये, बाकी तो महात्मा कहते कि हम रुपये को हाथ भी लगाते नहीं है, भाई इधर मत रखना वो उसको दे देना, ऐसे कुछ लोग महात्मा होते हैं, तो बोले बाप रे तो स्पर्श भी नहीं करते फिर रोटी कैसे खाते हैं, वो धन की तो रोटी आती है। लेकिन प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि मैं जब 1 लाख रुपया ले रहा हूँ मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए ले रहा हूँ, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ अगला लाख कभी दोगे, क्योंकि जब मेरे जेब में आ रहा है तो मेरे लिए मैं खर्च नहीं करने वाला हूँ, उसको भगवान की सेवा में लगाने वाला, आपका भी लगाऊंगा मेरा भी लगाऊंगा उनका भी लगा दूंगा, इसलिए उनको विश्वास रहता है कि जनता के सामने बोलेंगे सो व्हेन आर यू गिविंग मी योर नेक्स्ट 1 लाख, उनको उसमें संकोच नहीं है कि जो जनता जो आई है अनुयायी वो क्या कहेगी हमारे गुरु महाराज तो भ्रष्ट हो गए, ऐसी चिंता रहती नहीं है क्योंकि चेतना साफ है उनकी, वो खुद के लिए कर ही नहीं रहे। फिर कई तत्व दिए हैं, देखते समय कैसा है, एक तत्व दिया अहिंसा, अहिंसा ये सूक्ष्म और स्थूल तत्व है, हर तत्व अहिंसा बोले हाँ भाई जानवर को मत मारो उसका मांस मत खाओ, लेकिन अहिंसा का उच्चतम दर्जा यह है कि किसी को दिल दुखाना भी नहीं चाहिए, अतिरेकी होते ना अतिरेकी वो तो केवल शरीर का नाश करते दिखाई देते, लेकिन घर में वो आप बोलेंगे पाकिस्तान का बॉम्ब ब्लास्टर चलेगा लेकिन पतिदेव आप नहीं चलते मुझे, क्योंकि इतना हृदय पर आतंक होता है बातों से, जो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकता है वो पति की एक बात कर सकती है, एक पत्नी की एक बात पति के लिए कर सकती है, आपने मुझे ऐसा कैसे बोला, जीवन भर रोती रहेगी कि वो 2003 में 3 जनवरी को आपने मुझे ऐसा बताया था, उसके बाद में 50 बार माफ़ी मांगे तो भी वो जो दर्द है ना वो जख्म जो है वो बुझती नहीं है, होते कि नहीं ऐसे, शब्दों का जो प्रहार है ना उसको भी हिंसा कहते हैं। तो अहिंसा अगर आपको टोटल फॉलो करना है तो किसी जीव को अप्रत्यक्ष रीति से भी हमारी तरफ से कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको हिंसा नहीं पहुंचनी चाहिए, वो प्रिंसिपल है वो। जब हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं मांसाहार, लेकिन मांसाहार का सूक्ष्म तत्व है अहिंसा, नॉन वायलेंस इज द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल, और उसका स्थूल परिणाम जो है वो मांसाहार नहीं करना है, लेकिन मांसाहार नहीं करने से केवल आप हिंसक अहिंसक हो गए, ऐसा अर्थ नहीं होता है। मांसाहार छोड़ के भी आपको बार बार पति को पत्नी को गाली दे सकते हो, बच्चों को बुरा भला कह सकते हो, नेबर को कह सकते हो, मंदिर में भक्तों के साथ झगड़ा में कठोर शब्द कह सकते हो, और एकदम स्ट्रिक्ट शाकाहारी हो आप, वो प्रसाद ग्रहण करने वाले हो। तो ये स्टेजेस है, वो फर्स्ट स्टेज जो अहिंसा की है वो मांसाहार छोड़ना है, एकदम ABCD। तो लोग उस पर गर्व करते हैं, हम तो मांसाहार तो 20 साल हो गए, अभी चाय कॉफी तक नहीं पीते, इसी का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन वो तो फर्स्ट स्टेप है, तो कॉलेज में प्रवेश लिया आपने, ABCD स्कूल में प्रवेश किया आपने खाली, उसके आगे अहिंसा के कई सीढ़ी आपको चढ़नी है। हमारी वजह से, हमारे अस्तित्व के वजह से, हमारे होते ने होने की वजह से किसी भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये अहिंसा का सर्वोच्च प्रिंसिपल है। ना एक्शन से, ना ऐसे देखने से, किसी तरह से देखने से, ना किसी प्रकार से, ना कहीं बोलने से, ना कुछ करने से, हम लोग कुछ एजेंडा कोई रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, साइन करते हैं ओके कल से ये नियम, तो उसमें कितने भ्रष्टों को कितना कष्ट होता है, कितने मंदिर में आने वाले को कष्ट होता है, या कोई प्रधानमंत्री ने कोई एक साइन कर दिया बिल, तो भारत भर के 125 करोड़ जनता को कितना कष्ट होता है, उसके सारा कर्म उसको लगता है। उसकी वजह से उसने एक विधायक कार्य के लिए एक साइन कर दिया, लेकिन उसके दूर दूर तक परिणाम कैसे होते हैं, उसका सारा कर्म उसको लगता है एक साइन करने से। 1964 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में होते हुए गर्भपात का कायदा पास कर दिया। क्या हुआ उसे, उम्र के अभी 53 साल हुए, और आगे हजारों लाखों साल तक, जब तक जिंदगी है, जब तक भारत है, तब तक कुछ भी है, लोग गर्भपात करते रहेंगे, और वो जहां पर है वहां से नीचे नीचे जाते रहेंगे जहां पर भी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कायदा पास कर दिया है, अनंत काल तक जनता स्वार्थ के लिए गर्भपात करते रहेगी एक कायदे की वजह से। वो साइन करके उसी साल में मर गए, वो 64 में। और आज भी हम उनका बाल दिन मनाते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी जगह पर बैठे हो आज। मैं उनका निंदा करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि जितना हम बड़े होते हैं ना, उतना हमारे हाथ से बहुत सारी हिंसा की घटनाएं एक झटके में हो सकती है, क्योंकि अधिकारी इतना बड़ा है ना उसका, एक कागज में बैठ के साइन किया, उसमें तलवार नहीं चलाया उसने लेकिन एक कागज में बनकर एक पेन की स्याही से एक स्याही करने से कई बालकों के गर्दनें कट रही है गर्भ के अंदर, तो उस कलम में कितनी शक्ति है एक साइन करने से। एक भारतवर्ष में केवल रोज 50,000 बालकों की हत्या हो रही है गर्भपात के रूप में। पेपर में कभी आता है क्या, एक पुणे में एक्सीडेंट हो गया तो पेपर में फोटो आता है कि ये कार का एक्सीडेंट हो गया और 4 लोग मरे, 2 अत्यवस्थ हैं हॉस्पिटल में, ऐसा है। वो एक कलम के एक झटके से करोड़ों लोग बच्चों की जान और निकल रही है हर रोज बिना किसी को पता चलते। तो ये अहिंसा का तत्व समझना बहुत जरूरी है। हमको खाली इतना ही देखना है, एक भक्त बनने के बाद में मेरे वजह से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर होना ही है तो लाभ होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नुकसान तो कम से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सत्यम, सत्य पर आधारित अपना जीवन चलना चाहिए। सत्य का मतलब इतना नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं केवल सत्य बोलता हूं। लेकिन एक ऋषि के आश्रम में वो ध्यान कर रहा था, तो एक औरत भाग भाग के आई, ऐसे जान के डर से पसीना पसीना होकर भाग भाग के, महाराज मुझे छुपने का जगह दो। तो महाराज ने बोला, छुप जाओ उस गुफा में, छुप गई वो। उसके बाद 4 गुंडे भाग भाग के आए, तो महाराज हमने किसी औरत को देखा है। तो महाराज को क्या बोलना चाहिए, बोले महाराज तो सत्य के आधारित जीवन जीते हो, तो सत्य में वो जयते भगवान के भक्त हैं, उसको भी झूठ नहीं बोलते हैं। बोलेंगे वो उधर अंदर है, तो क्या होगा। तो उस समय जब महाराज जी बोलते हैं, मुझे मेरे औरत को देखा नहीं किधर, मैं तो ध्यान में था, मैंने किसी और को देखा नहीं, तो वो इधर देखे भाग के आगे चले गए। तो उनका ये कहना सत्य अधिष्ठित है कि असत्य अधिष्ठित है, बताइए आप। वो असत्य भी सत्य पे आधारित है, हमको ये समझना चाहिए। हम ले क्या आप लोग भक्त हो झूठ बोलते हो, नहीं वो झूठ बोलने का भी विधायक उपयोग किया जा रहा है। सत्य के कार्य को चलाने के लिए वो छोटा छोटा झूठ बोला जा रहा है, वो असत्य जो है वो बड़े सत्य के अधिष्ठान में सम्मिलित है। उस तरह का सत्य हमको अपनाना चाहिए, हमको केवल दिखावे का सत्य अपनाना नहीं चाहिए। हमको क्या करना, हम तो सत्य बोलेंगे उसका परिणाम कुछ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य विधायक कार्य के लिए किया गया है, उसका पालन जो है उसका परिणाम विधायक होना चाहिए, सर्व कल्याणकारी होना चाहिए, तभी वो सत्य जो है वो सत्य है, असत्य होने पर भी सत्य है। तो हमें वैसे सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी होना मतलब क्या, परम सत्य जो भगवान है उनमें हमारा जीवन अधिष्ठित है, उनके लिए जो अनुकूल है वो सत्य है हमारे लिए। यही भगवान ने महाभारत में भी दिखाया। धर्मराज अपने सत्यवादी होने पर इतने आसक्त थे कि उनकी पूरे विश्व में ख्याति थी कि दुनिया झूठ बोलेगी लेकिन युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। तो द्रोण ने भी बताया कि मैं ये भीम का बात नहीं मानता, वो तो कभी भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं मानूंगा बात अगर युधिष्ठिर ने कहा। तो बात युधिष्ठिर तक आई, सब मीटिंग युधिष्ठिर तक आई। युधिष्ठिर अभी आपको बोलना होगा अश्वत्थामा, तो नहीं मैंने झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो भगवान ने क्या दिखाया उस लीला से बताता हूँ आपको। भगवान ने कहा तुमको इतना कष्ट है ये बोलने के लिए, तो आप ऐसा करो, ऐसे बोलो कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, मतलब हाथी अश्वत्थामा मरा कि नर अश्वत्थामा मरा ये मुझे पता नहीं है, ऐसे बोलो आप। तो वो राजी हो गए, बहुत रिलक्टेंटली राजी हो गए। तो गए उनको लेके गए द्रोणाचार्य के सामने, और द्रोणाचार्य ने पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मर गया है। और अगला वाक्य उन्होंने बोलना शुरू किया नरोवा कुंजरो, भगवान ने जोर से शंख बजाया, इतना जोर शंख बजाया कि द्रोणाचार्य को वो सुनाई नहीं पड़ा कि नरोवा कुंजरोवा, उधर ही शस्त्र छोड़ दिए। शस्त्र छोड़ते तुरंत दृष्टद्युम्न ने सर काट दिया उनका। आप बोले भगवान बड़े कपटी है, क्या क्या चाल चलते हैं भगवान। एक भगवान की हर चाल धर्म पर आधारित है, धर्म को स्थापन करने के लिए है, आगे जगत के कल्याण के लिए है। अगर वो द्रोणाचार्य नहीं मरते तो महाभारत का युद्ध कभी पांडव नहीं जीतते, भीष्म अगर नहीं गिरते तो नहीं होता, कर्ण को नहीं मारा जाता नहीं होता। तो भगवान ने हर वो गलत काम किया है जो भक्तों को आगे राजा बनाने के लिए और विश्व में धर्म की स्थापना करने के लिए अनुकूल था, वो हर गलत कदम सो कॉल्ड तथा कथित गलत कदम भगवान ने उठाया है। तो जो आदमी अभक्त होता है ना वो महाभारत पढ़ता है, बोले ये भगवान कृष्ण ना ये बहुत चालू आदमी, क्या क्या नहीं कि भगवान कैसे हो सकता है, ये इतना कपटी, इतना कारस्थानी, इतना षड्यंत्री। लेकिन अगर आप भक्त हो समझेंगे कि इन्होंने ये सब कुछ किया है, खुद के लिए नहीं किया है, उनको खुद राजा नहीं बनना था, उनको परम भक्त शुद्ध भक्त धर्मनिष्ठ धर्मराज को राजा बनाकर विश्व को धर्म का राज्य बनाना था, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया खुद को बदनामी लेने का, है कि नहीं। लेकिन समंतामणि का जब कथा हुआ तब खुद भगवान गए और जब मामला सिलटा के लेके आए और बताया कि देखो मैंने चोरी नहीं किया था उसका, उस समय राजा थे, वो राजा के लिए ऐसे कलंकित भावना प्रजा में नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो खुद गए और खुद मामला उसको सिलटा के सत्य प्रकाशित किया उन्होंने, वो सब शांत हो गए उसमें, भाई भगवान पर कोई लांछन नहीं है इसके पर। तो एक जगह पर सत्य को साबित करने के लिए खुद जाके मेहनत कर रहे हैं और एक जगह पर गलत काम कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। और उसमें क्या हुआ, धर्मराज का जो आसक्ति था अपने सत्यवादी होने का, उसको भगवान ने काट दिया उधर। क्या बताया कि तुम्हारा सत्यवादी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, धर्म का राज्य होना इंपॉर्टेंट है। अगर 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 वो दो बहस होती है कि भाई मेरा सत्यवादी होना इंपॉर्टेंट है कि धर्म का राज्य होना इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा सत्यवादी होना इंपॉर्टेंट नहीं है और धर्म का राज्य आने के लिए तुमको भी असत्यवादी बनना पड़ेगा। तो उस हिचकिचाहट के लिए, क्योंकि वो हिचकिचाए ना, उनको वो एकदम प्रसन्न नहीं थे, वो जब ये बात कही गई उनको ऐसे बोलना है आपको, तो वो बड़े नाराज थे, वो बोले ये सही नहीं है ऐसा लग रहा था उनको। उसके हिचकिचाहट के लिए उसको नरक का दर्शन करना पड़ा कुछ समय के लिए स्वर्ग जाने के पहले। तो भगवान ने क्या बताया कि सत्यवादी आपको होना चाहिए, लेकिन आपका सत्यवादी होना धर्म के लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए, तभी वो महत्वपूर्ण है। आपके लिए, आपके इज्जत के लिए, ख्याति के लिए वो होगा तो वो सत्यवादी भी आपको, सत्यवादी होना भी आपको गिरा देगा। तो धर्मम धर्म सुनिश्चिता पुमसा, धर्म का पालन भी उनको संतुष्टि के लिए करना है। तो ये सत्यम, हाँ सत्य के आधारित, और सत्य जो है परम सत्य यानी भगवान, उस पर हमारा जीवन का विचार कार्य गति सारा अधिष्ठित होना चाहिए उनके ऊपर। और उनके लिए क्या प्रसन्न करने वाली चीज है, वो फिर सत्य हो टेम्पररी या सब टेम्पररी झूठ हो, उसको भगवा भक्त अपनाते हैं। अगर उसका अंतिम अंजाम भगवान की प्रसन्नता है तो फिर वो उसको अपनाएगा। यू विल नॉट हेजिटेट कि मेरा क्या होगा, फिर मैं क्या बोलेंगे लोग, इतने साल का पुराना भक्त है वैसे कैसे कर रहा है। तो वो अगर विश्वास होगा उसको कि ऐसे करने से भगवान की और गुरु जी की सेवा होगी तो वो करेगा उसको। ही इज नॉट अटैच टू, उसका खुद का ख्याति क्या है। उसके आगे अस्तेयम, हाँ अस्तेयम का अर्थ क्या दिया है, तपस्या शायद नहीं, एनीवे अस्तेयम, अस्तेयम का शब्द है कि केवल भगवान की सेवा के लिए, जीवन चलाने के लिए इन पृथ्वियों पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप प्रकृति से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो संग्रह करने के लिए नहीं लेना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए लेना चाहिए। और क्या कहते हैं कि जरूरत से अधिक जब संग्रह करते हैं कि व्यक्ति चोर है। आप बोले अरे मैंने तो मेहनत से कमाया पैसा सब, कभी कुछ गलत काम नहीं, कभी झूठ नहीं बोला वो, लेकिन जरूरत से अधिक पैसा इकट्ठा किया सत्य मार्ग से भी, नियोजित अच्छे मार्ग से भी, तो भी वो चोरी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्त भुंजिता। हाँ आगे का क्या भाई, फोर्थ पार्ट क्या याद नहीं आ रहे। तो भगवान कहते हैं कि विश्व आपके लिए बनाया मैंने, लेकिन आपको उसमें से उतनी चीज लेनी है जो आपको जरूरी है। अभी कैसा है, 2 किलो गेहूं रास्ते में डाल दो आप, तो बहुत सारे पक्षी आएंगे अलग अलग प्रकार के, अपना अपना दाना खाएंगे, पेट भर के चले जाएंगे। और उसके बाद में एक इंसान आएगा वहां पर, वो क्या होगा, गोनी लेके साथ में आएगा, वो सारा गेहूं उठालेगा, गोनी अपने घर पे घर ले जाएगा वो। दिस इज इंसान, ये मनुष्य है। वो नहीं ऐसा लगेगा आज की रोटी के लिए 1 पाव किलो गेहूं की जरूरत है, मेरे पत्नी बच्चे इतना 10 रोटी बन जाएगा, वो ले जाएगा उसमें से, कल आके वापस उतना लेके जाएगा, ऐसा नहीं करेगा वो। सारा लेके बन भरेगा और गोनी में जाकर घर में स्टोर करेगा, बोला 10 दिन तक चिंता नहीं है। इसी संचय प्रवृत्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक शिष्य को अपनी सेवा से बरी कर दिया था। वो था ना तांबुल हरितकी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है उस भक्त का। वो भिक्षा मांगने गया तो वो महाप्रभु जी को तांबुल चाहिए था भोजन के बाद में, तो वो एक माता के पास भिक्षा करने गया, तांबुल आपके पास वो है क्या, हरितकी है क्या, 2 हरितकी चाहिए मुझे। तो उसने 20 लाके दिए उसको, तो इसने क्या किया 20 ही लिया जेब में रखा उसको, और 2 महाप्रभु चैतन्य को भोजन के बाद में दिया। तो अगली बार जब भोजन किया तो तुरंत 2 उसने और खिलाया, तो महाप्रभु जी पूछा कहीं कहाँ से आया, तो सुबह जब मैं गया था ना तो उस औरत से 20 लेके आया मैं, बोला चले जाओ मेरे सेवा से निकल जाओ, तुम्हारे मन में संचय प्रवृत्ति है। हाँ क्योंकि भगवान पर भरोसा नहीं है कि जब अगला समय आएगा 2 हरितकी वाला तो कोई और दान भिक्षा में दे देगा आपको, आपको भरोसा नहीं, इसलिए आपने पहले संग्रह कर लिया उसका। तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपनी सेवा से निकाल दिया, क्योंकि सेवा करना भी एक वो चेतना की बात है ना, वो ऐसा संग्रह करके सेवा नहीं करते, भगवान पर भरोसा करना। अभी सनातन गोस्वामी ने बताया था कि सब कुछ सोने की मोहरे लुटा दिया सनातन गोस्वामी ने, और फकीर बनकर, मतलब इतने धनी थे वो, उनके पास बोट भर के सोने की मोहरा थी, बोट भर के मतलब कितनी करोड़ कितनी लाभ अब जो सोने की मोहरा होगी, इतनी आप दान दे रहे हो तो आप 7-8-10 सोने रख लिए तो आपको कोई बोलेगा क्या, अरे कितना कंजूस और लालची हो आप, 7 रख रहे हो आप, अरे करोड़ों अब जो सोने की मोहरे वो दान में दे रहा है, और कुछ 7-10 रखेगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन ये इतने पक्के थे भगवान की सेवा में, सब कुछ छोड़ दिया, और 2 सेवकों को लेकर आगे जंगल में भाग रहे हैं भगवान को मिलने के लिए। तो रास्ते में एक जगह रुकते हैं, तो वो जो जिस जगह रुकते हैं ना भोजन करने के लिए, उस जगह पर वो जो आश्रम कुछ बोलो मठ आश्रम रहने की व्यवस्था जो भी गेस्ट हाउस का जो मालिक है, उसको पता चल जाए कि इसके सेवक के जेब में 7 सोने की मोहरे हैं, तो वो प्लान करता है कि रात को इनको सबको काट डालूंगा और 7 सोने की मोहरे में ले लूंगा। तो वो जो गेस्ट हाउस का मालिक है उसका सस्पिशियस बिहेवियर है ना, वो संदेह युक्त बिहेवियर, वो देखते हैं सनातन गोस्वामी बराबर परखते हैं कि ना गड़बड़ है इधर कुछ, इसका जो सेवा करने का तरीका, हमको पानी दे रहा है, ये कर रहा है, इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है कि लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तुरंत अपने सेवक को पूछता है तुम्हारे जेब में कुछ है, बोलो तुम्हारे जेब में कुछ है, हाँ महाराज 7 सोने की मोहरा है, पागल व्यक्ति हो तुम, दे दो निकाल के उसको तुरंत, वो तुम्हें मार देगा, गला काट देगा तुम्हारा। तो तुरंत 7 मोहरे निकालकर उसी गेस्ट हाउस के मालिक के हाथ में देता है, जैसे ही वो 7 मोहरे उसको मिलती है वो तुरंत महाराज के चरणों में गिरता है, महाराज मुझे माफ करना, मैं आपको सबके सर काटने का प्लानिंग कर रहा था। मतलब क्या कि भगवान पर भरोसा नहीं है, कोई रास्ते में कुछ हो गया तो 7 मोहरे काम आएगी। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं हम लोग अगर फकीर होके निकल गए ना, अभी फकीर बनने का प्लानिंग किया हम लोग ने अभी ये सब छोड़ के, तो फकीर बनने का मतलब क्या है, भगवान पर पूरा विश्वास होकर जिंदगी जीने वाले हम लोग, भगवान खिलाएंगे हमको अब इसके आगे, कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, क्या करना है, कहाँ हमारा सुरक्षा होगी, वो सब भगवान का ही उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व केवल उनकी सेवा करने का है। और जब तुम सात मोहरे लेकर चल रहे हो, उतना हद तक भगवान पर अविश्वास दिखा रहे हो कि मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, पता नहीं भगवान उस समय क्या करेंगे। और जैसे ही वो सात मोहरा वापस दिया ना उसने, वो भी एकदम माइंड से फ्री हो गया, नो टेंशन, अभी हमको कोई लूटने वाला आ ही सकता नहीं, क्या लूटेगा वो। और चोर भी कभी जान से बेकार में मारता नहीं है, वो मिलेगा तो ही मिलने के लिए ही मारता है ना। तो सनातन गोस्वामी और उनका सेवक दोनों एकदम निश्चिंत हो गए। वो जब जरूरत की अधिक हम लोग कुछ लेते नहीं है, हम लोग स्वस्थ रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता नहीं। लेकिन मैं समझो यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर 10,000 रुपये हैं, एक हाथ में सोने की अंगूठी है, गले में सोने की चेन है, और कुछ और इम्पोर्टेंट कागज पत्र रखे हैं, और रात भर ट्रेन में नींद नहीं आएगी मुझे, दो दो मिनट में उठ के देखेगा बैग है ना नीचे, ठीक है भाई। तो जब कोई मोह का साधन साथ में रखते हो ना, तो आदमी में भय बना रहता है। अगर मोह का साधन नहीं है आपके पास, या अगर साधन है लेकिन मोह नहीं है, तो आप निश्चिंत रह सकते हो। अगर भय से मुक्त होना है आपको, या तो अपने पास जो है उसमें आसक्ति मत रखो, आराम से जियो, या तो उसको साधन रखो ही मत अपने पास, तो ही आप निर्भय हो सकते हो, भय से मुक्त हो सकते हो। अगर आपको कोई वस्तु है जिसमें आपका मन लगा हुआ है, रात को नींद नहीं आएगी आपको। हरे कृष्णा। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये दो श्लोक है, दूसरा श्लोक है ईशोपनिषद का, घर में जाके जरूर पढ़ना उसको आज आप। उसमें लिखा गया है आपके लिए कोटा दिया है भगवान ने, उतना ही यूज़ करो। शेर के लिए भी कोटा दिया है, बकरे के लिए भी दिया है, सबके लिए पर्याप्त साधन किया है, उतना ही साधन अपने लिए जो दिया है उतना ही ले लो, दूसरे के साधन पे जाके खरोचो मत। जैसे कि अपना खाना पीना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, लेकिन फिर भी हम लोग मांस खा रहे हैं, मतलब जानवर का जो हिस्सा है उसमें आप लोग अपना हाथ डाल रहे हो। जानवर कभी आता है क्या, शेर तुम्हारे घर में गोभी खाने के लिए आता है कभी? आपका घर का गोभी चोरी किया उसने, कॉलीफ्लावर चोरी किया, ऐसा होता है कभी? या कभी गाय जाके भूखे होने पर मछली खाती है क्या, नॉनवेज खाती है? वो कभी भी नियम तोड़ते नहीं है। केवल मनुष्य ऐसा एक जीव है जो खुद के लिए कुछ भी कर सकता है, सांप भी खा सकता है, बिच्छू भी खा सकता है, और केकड़ा भी खा सकता है, और मनुष्य को भी खा सकता है जरूरत पड़ेगी तो, खाया हुआ है दूसरे महायुद्ध में। एक मनुष्य ऐसा है तो सारे निज निसर्ग नियमों का लोभ करके कुछ भी कर सकता है स्वार्थ के लिए, बुद्धि का दुरुपयोग करके। लेकिन जानवर जो निचली योनि के मानते हैं, वो लोअर योनि है, लोअर स्पीशीज बोलते हैं उसको, लेकिन वो कभी भी प्रकृति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। हमको सीखना है उनसे, हम बोलते हैं कि वो निचले योनि की जीव ऐसे कहते हैं, लेकिन निचले योनि के नहीं है, वो हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमारे योनि में जो नियम, हमारा नियम है वो हम पालन नहीं करते हैं, वो निचले होकर भी अपने योनि का नियम पालन करते हैं। वो चोर नहीं है, वो रोज जाते हैं, बिल्ली शेर और कुत्ता और पंछी रोज अपना भोजन ढूंढने को जाते हैं, कभी अपना घोंसले में वो स्टोर नहीं करते कि भाई चार दिन के लिए डिलीवरी। मैं मेरे घर पे, मेरे घर के ग्रिल के अंदर मैंने कबूतर का डिलीवरी देखा हुआ है मेरे घर पे 40 डेज तक। वो माँ डिलीवरी देने के बाद में इतनी भूखी रहती है खुद, लेकिन खुद जाके रोज के तरीके पर खाना ढूंढ के लेके आते, पहले बच्चों को खिलाती है और फिर खुद खाती है। मैंने खुद देखा है और उसका दुख देखकर मुझे इतना परेशान हो गया, मैंने वाइफ को बोला रोज दाना डाला करो उसको, तो वो दाना डाला हुआ भी पहले निकाल के बच्चे को खिलाती है और फिर बाद में खाती है। कबूतर के अंदर इतनी बुद्धि कहाँ से आई बताओ आप? कितना प्रेरणा मिली मुझे कि खुद भूखी है, डिलीवरी के बाद में माँ को बहुत एग्जॉशन होता है, वह कबूतर हो या इंसान की औरत हो, उसके बाद भी वो जाकर उस मेहनत कर रही है। हाँ क्या बोल रहे हैं, कबूतर क्या हुआ? हाँ इधर लिखा है कबूतर का, इधर क्या हुआ है, चिड़ियों से सीख सही, इधर लिखा है। यही चित्र मेरे घर के वो रील के अंदर था, तो मैं इतना दंग रह गया देख के। एक एक यकश्चित पक्षी होने पर भी जिसको बुद्धि नहीं, सद अविवेक बुद्धि नहीं उसको, फिर भी वो खुद की भूख को सहन करके अपने बालक को डाला हुआ दाना पहले खिला रही है, बचा हुआ फिर खुद खा रही है। क्योंकि वो कोई भी प्राणी जो है ना, योनि वाला, जितने भी योनियां भगवान ने बनाई हैं, एक प्राणी भी चोर नहीं है। अगर गाय भी किसी के ठेले पर मुंह डालते हैं ना, तो पूरा ठेला साफ नहीं करती, वो उसको जितनी भूखी उतनी खाती, वो कल के लिए एक्स्ट्रा लेके जाती नहीं, वो बोले कल दोबारा चोरी करने को पड़ेगा, मैं कल के लिए खा लूंगी, ऐसा नहीं करती। कारण श्रद्धा है, हमको श्रद्धा का तत्व समझना चाहिए। चोरी आदमी कब करता है, जब उसको श्रद्धा नहीं होती कि मिलेगा मुझे। और भक्त अवधूत कैसे बन रहता है, अजगर प्रवृत्ति भक्ति की कैसे बनती है, भक्त का एक गुण है अजगर प्रवृत्ति, ऐसे शास्त्र में लिखा है, मतलब जब मेरा खाद्य मेरे मुंह में आएगा तब मैं खाऊंगा उसको, जाके मेरे खाद्य के पीछे भागूंगा नहीं, उसको कहते हैं अजगर प्रवृत्ति। वो एक प्रवृत्ति भक्त के लक्षण मानी गई है, उसको श्रद्धा है कि मैं भूखा नहीं रहूंगा, मेरे पेट भरने के लिए मेरी जितनी चिंता है उससे अधिक चिंता मेरे भगवान को है अपने भक्त का पेट भरने की, आपका भक्त का क्षेम कुशल से करने की श्रद्धा है उसको। इसलिए भगवान भी इस श्रद्धा की वजह से मजबूर हो जाते हैं उस भक्त का लालन पालन करने के लिए। वो खुद की देखभाल नहीं कर रहा है, वो सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान आके उसकी देखभाल करते हैं। जैसे जना भाई का दलन डलते हैं और किसी और का गाय चराते हैं और किसी और का शेर छापते हैं, अपने हित की चिंता अपने से अधिक भगवान को होती है हमारे लिए। इस बात पर जिसको विश्वास है फिर वो गधे मेहनत नहीं करता है, अपना कर्तव्य करेगा और जो आएगा शांत रहेगा, उसको मालूम है कि। वैसे मैंने पिछले प्रवचन में बताया था आपको कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रहता है उसके सारे कर्तव्यों का अरेंजमेंट भगवान खुद करते हैं, उसके जितने ऑब्लिगेशन है, जितने कर्तव्य है, जितने उसके ड्यूटीज है, वो सारे भगवान पूरे करने का इंतजाम करते हैं। यहाँ तक कि 9 लड़कियों का विवाह भगवान ने झट से ऐसे कर दिया कर्दम मुनि के एक ही सिटिंग में, वर ढूंढने की भी जरूरत नहीं, ब्रह्मा जी खुद लेके ही आए उनको रेडीमेड, एक ही सिटिंग में पूरा कर दिया काम। इतना बड़ा कर्तव्य था, शायद कितने 11 कम से कम 11 12 22 साल तो उनको रुकना पड़ता था 9 लड़कियों की शादी करने, एक कुछ घंटों में हो गया, तुरंत विरक्त होकर चले गए। तो विश्वास होना चाहिए इनको। तो ये चोरी का तत्व है ना, अस्तेयम, इधर गया तो अस्तेय, हाँ, जरूरत से अधिक प्रकृति से लेना गलत है। बड़ा विषय है, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ब्रह्मचर्यम, ये मत समझना कि केवल यहाँ पर जो मंदिर में सैफरन पहन के बैठे उनके लिए ब्रह्मचर्य का नियम है। हर एक मनुष्य जीव जो भगवान को प्राप्ति करना चाहता है उनको ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है। और गृहस्थों को जब बालक चाहिए तभी उनका उनको परमिशन दिया गया है, बालक चाहिए तभी संबंध कर सकते हैं, जितना जब बालक होने के लिए जरूरी है उतना संबंध कर सकते हैं। बाकी समय में गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य का नियम है। उठ सूट शरीर का भोग करने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं दिया गया है। और ब्रह्मचर्य एक होता है गृहस्थ ब्रह्मचारी, एक होता है वैसे ब्रह्मचारी। गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का नियम है, मतलब नियमित रूप से नियम के अंदर ही रहता है वो। तो भगवान क्या बोलते गीता में कि धर्म के आधार पर किया हुआ जो संबंध है वो खुद मैं हूँ, आई एम दैट काम। वो जो काम वासना का एक्टिविटी है वो मैं स्वयं हूँ जब वो धर्म के नियम के आधार पर किया जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य का तत्व है। वो ब्रह्मचर्य करने से ओजस प्राप्त होता है, वो दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, वो शार्पनेस बुद्धि की प्राप्त होती है जिसमें भक्ति के गहराई के तत्व जो है वो हम समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन क्यों करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे तो जो एनर्जी काम में वेस्ट होती है वो एनर्जी ही हमारे लिए आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए आवश्यक होती है। वो कहते हैं ओजस, वो ओजस नीचे की तरह बह के खत्म हो जाती है। अगर वो बचाई जाती है तो वो शक्ति हमारे दिव्य तल्लख बुद्धि के लिए कारण बनती है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद हमारे गृहस्थ थे, लेकिन कितने बढ़िया सन्यासी बने उसके बाद में, तो गृहस्थ आश्रम में भी वो नियमित थे। हमने कई संतों को बोलते हुए सुना है कि वो कई गृहस्थ संत हैं और आगे भी संत गृहस्थ थे, व्यास मुनि गृहस्थ थे, भारद्वाज मुनि गृहस्थ थे, कितने सारे हमारे जितने भी कुल दे हमारे जो कुल के क्या कहते हैं गोत्र वाले ऋषि हैं वो सब गृहस्थ थे। तो हम उनके गोत्र में कैसे आते, उनके पति पत्नी थे, उनके बच्चे थे, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हम हैं। लेकिन वो मुनि के रूप में उनका आदर क्यों करते हैं, हम महात्मा जन के रूप में आदर करते हैं, क्योंकि गृहस्थ होने पर भी वो नियमित रूप से केवल जरूरत के लिए करते थे काम, बाकी सारी शक्ति जो है वो भगवान के सेवा के लिए लगाते थे। इसलिए हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर बालक को, हर गृहस्थ को, हर ब्रह्मचारी को, हर सन्यासी को, सबको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। और ब्रह्मचर्य का मतलब केवल स्त्री से दूर रहना का मतलब नहीं है, उसका शब्द में किधर लिखा है क्या, स्त्री का नाम किधर है क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, जो ब्रह्म में रहकर आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है, नहीं तो वो ब्रह्मचारी है, उसको हाले ब्रह्म है, ब्रह्मचारी होने का, वो ब्रह्म है कि ब्रह्मचारी हूँ। अगर ब्रह्म में आपका अधिष्ठान नहीं है, ब्रह्म में आपका जीवन चरित्र नहीं है, तो वो आपका जीवन नाम का ब्रह्मचर्य है, वो कभी भी गिर सकता है, वो ऐसे तार पर खड़ा है कि धक्का दे कभी भी गिर सकता है। लेकिन ब्रह्म के अधिष्ठान पर जिसका जीवन है वो ब्रह्मचारी है, और हमको वैसा ब्रह्मचारी बनना है, नाम के लिए वस्त्र का ब्रह्मचारी नहीं बनना है, मन में लड्डू फूट रहे हैं और शरीर में गेहूं वस्त्र पहना हुआ है, वैसा ब्रह्मचारी नहीं बनना है हमको। किधर भी रहेंगे, जिसका चित्त भगवान में ब्रह्म परब्रह्म में लगा हुआ है वो ब्रह्मचारी, चाहे वो गृहस्थ हो और बहुत कीमती वस्त्र पहने हुए हो, ब्रह्मचारी है। जैसे हमारे रामानंद राय थे, गवर्नर थे, सिल्क के वस्त्र पहनते थे, सुगंधित तेल लगाते थे, पान खाते थे, बोले तो ये कैसा आचार्य है, इतना इतना भोगी दिखता है आदमी है। जैसे ही दो श्लोक भगवान के गौरव में गाए गए तो सब होशिक हो गए, उनका सारे कपड़े वपड़े फाड़ दिए पूरे एकदम, दो शब्द भगवान के नाम का श्लोक उच्चारण किया तो एकदम भाव विभोर होकर बेहोश होकर गिर गए, सारा सब तोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ हर चीज कपड़े वपड़े फाड़ दिए। तभी वो देखते हैं, अरे बाप रे, ये भक्त की परीक्षा है, देखो पहना होगा, वो गवर्नर है तो गवर्नर का वस्त्र पहनेगा ही, राजा होकर युधिष्ठिर महाराज राजदंड धारण करेंगे कि नहीं करेंगे, वो राजा है तो राजदंड धारण करेंगे, उसमें तो उसका कर्तव्य है वो, लेकिन राजधारण धारण करने का मतलब ये नहीं कि उसमें आ सकते हैं वो। जैसे कृष्ण अंतर्दान हो गए तुरंत राज्य छोड़ के चले गए, दो मिनट भी सोचा नहीं, इतना बड़ा पॉपुलेंस इतना दिन के बाद मिला है, थोड़े दिन रहेंगे बाद में जाएंगे, ऐसा बोला क्या? परीक्षित महाराज को 7 दिन का शाप मिला कि 7 दिन का मर जाओगे, तो बोले 7 दिन तो है कम से कम राजा के रूप में एंजॉय कर लूंगा मैं, बाद में मैं तो मरना ही है। तत्क्षण छोड़ दिया, कोपिन पैर के लंगोटी पहन के चले गए, इसका मतलब ना पहले उनको आसक्ति थी, ना बाद में थी, ना तभी थी, वो तो भगवान की सेवा के लिए चल रहे थे। उसको कहते ब्रह्म का अधिष्ठान, और वही व्यक्ति असली ब्रह्मचारी है जिसका मन भगवान में लगा हुआ है। उसके बाद में तपह, ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश करते हैं कि मनुष्य जीवन तप के लिए है, क्योंकि मनुष्य के अलावा और कोई भी जीव तपस्या नहीं कर सकता है, केवल मनुष्य को तपस्या करने की शक्ति दी गई है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी व्रत कोई नियम पालन नहीं कर सकता है, वो केवल आर निद्रा भय मैथुन बस इतना ही कर सकता है। लेकिन तप यानी तप की व्याख्या क्या है? तप की व्याख्या है कि असुविधा को स्वीकार करना, एक तत्व हो गया तप का, असुविधा स्वीकार करना। दूसरा उसका प्रिंसिपल है स्वेच्छा से, अगर मुंबई में विरार और मुंबई के चर्चगेट विरार के ट्रेन में आप लटक रहे हो, कितनी बड़ी तपस्या है, लेकिन तपस्या नहीं है वो इच्छा से नहीं करते हैं। अगर उनको बोले 4 दिन छुट्टी है, गाड़ी बंद पड़ गई, बारिश आ गई तो टेबल टूट गया, तो आराम करेंगे घर में, बहुत हाथ छूट गए उससे, तो तपस्या नहीं है। तपस्या वो होती है जो स्वेच्छा से की जाती है, स्वेच्छा से स्वीकार की गई असुविधा। दो अंग हो गए, तीसरा अंग क्या है उसका? भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो बेफजूल की तपस्या नहीं करता है। कोई भी चीज़ आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं और कल मैं केवल फल खाऊंगा, ऐसा विम्जिकल तपस्या नहीं करता है वो। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है, गुरु ने बताया हुआ है, वो असुविधा वो स्वेच्छा से स्वीकार करेगा। ये 3 तत्व जब मिलते हैं तो वो तपस्या हो जाती है। और एक स्तर पर तपस्या का व्याख्या किया गया है कि इंद्रियों का भोग जब हम छोड़ देते हैं, और वो छोड़ने के बाद जो कष्ट होता है ना, मुझे कल आमरस खाया लंच में और आज सूखी रोटी भी खाने को मिल रही है, तो कल आमरस की याद आएगी ना आपको, तो एक अच्छा हुआ था कल मैं चलो ज़्यादा खा लेता, तो लेकिन आज तो शादी तो है ही नहीं, अभी कल शादी थी, अभी आज तो किसी शादी ही नहीं किसी की, घर में अभी अब परसों की बची हुई रोटी और सब्जी खा रहे हैं, वो फेंकना नहीं इसलिए। तो उस समय मतलब कोई इंद्रियों का भोग आप त्याग रहे हो, और वो इंद्रियों का भोग त्यागने के बाद में कष्ट तो होता ही है ना, इंद्रियों को आदत लगी हुई है, लेकिन वो इंद्रियों की जो आदत है उसको दुर्लक्ष करके जो भगवान की सेवा में कुछ करता है उसको भी तपस्या कहते हैं, उसको सहन करना। जैसे कि आज एकादशी है, आपको मालूम है कि पराठे नहीं खाना है आपको आज, और पराठों की याद आ रही है, 12 माला हो चुकी है, 13वां चल रही है, और आलू पराठे की याद आ गई, सड़ल झाक करके, वाओ अभी कल मिलेगा वो, आज नहीं मिल सकता, नहीं नहीं जाने दो उसको, भूल जाओ, माला करो, आज एकादशी है। तो वो जो असुविधा आप स्वीकार कर रहे हो ना, उसको भी तपस्या कहते हैं, लेकिन वो भगवान की संतुष्टि के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। तो तीनों बातें जब वो पूरी करते हो ना, तपस्या का पूरा फल मिलेगा आपको। बेफजूल की तपस्या करने में कोई लाभ नहीं है, तप करके हम भगवान को कोई प्रसन्न नहीं कर सकते, प्लीज़ याद रखना। तप हो या दान हो या कोई भी और कुछ भी चीज़ हो, जब तक भगवान उसमें सम्मिलित नहीं है तब तक वो अपूर्ण है। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना कि क्या समझते हो आप, केवल दूध पीता ब्रह्मचारी बन के भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हो, ऐसा आपका भ्रम है, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा उनको उन्होंने सुभाष आनंद से फटकार के निकाल दिया। वो सुभाष ठाकुर कह रहे, महाराज हमारा चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु जी ये तो केवल दूध पी के रहता है, इतना तपस्वी है, ये योग्य है आपके कीर्तन में आने के लिए, और निकाल दो पहले उसको बाहर। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि केवल दूध पीकर रहने से भगवान की कृपा प्राप्त करते, तो वो भ्रम में है, क्योंकि कोई भी तपस्या प्योरली भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती है। जब तक भक्ति नहीं है तो वो तप का भगवान को कोई वैल्यू नहीं है, तब तब तक वैल्यूएबल है, तब तक मूल्यवान है जब तक वो भगवान के लिए किया जा रहा है। हिरण्यकश्यपु ने तप किया है, सबसे नंबर वन गोल्ड मेडल तो हिरण्यकश्यपु का है तपस्या में आज तक के इतिहास में, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? क्योंकि वो तप उसने तमोगुण में, स्वार्थी भावना में, दुनिया को कष्ट पहुंचाने के लिए, खुद के अधिकार प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्तों को कष्ट देने के लिए, ऐसे अनंत हेतु से उसने वो भयंकर तप किया था, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। पृथ्वी पर तप कर रहा है और सर से जो आग निकल रही है तप की वजह से, वो स्वर्गलोक में इंद्र को तकलीफ दे रही है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है बिना वजह से, ऐसा तप किसी ने नहीं किया था आज तक। लेकिन वो तप निषेधार्ह है, वो तप अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। और फिर हमारे ध्रुव जी ने भी तपस्या किया है, भगवान ने उनको दर्शन देकर कितना कृपा किया उसके ऊपर, क्योंकि तप करने के पीछे जो भावना थी ना उसकी, वो भगवान के लिए थी, इसलिए वो तप इम्पोर्टेंट हो गया, मूल्यवान हो गया, अर्थपूर्ण हो गया। और इनका तप इतना महान भयंकर होने की वजह से भी वो यूजलेस हो गया, मूल्यहीन हो गया। हर चीज़ में भगवान का अधिष्ठान होना चाहिए, तब आप हर करने वाले हर चीज़ को महत्व आता है। जैसे कि आपके पास 50 जीरो हो तो सब जीरो ही है वो, लेकिन एक अगर लगा देते भगवान का उसके आगे, तो हर जीरो को वैल्यू हो जाती है, फिर 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10000, और 1000 का 10000 का 1,00,000 बन जाता है। वो एक जो है ना, वो कृष्ण है। वो कृष्ण को जब तक आप जीवन में लाते नहीं हो, आपके पास 50 जीरो होंगे ना, तो वो जीरो रहेंगे, उसकी बेरीज जो है ना, वो जीरो रहेगी हमेशा। तो ये तप जो है, ये भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए, अधिक तप करने की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए जितना अनुकूल है उतना ही तप करना चाहिए। फिर आता है शौचम, शौचम का वर्णन दिया, पढ़ रहे ना आप, शौचम शुद्धि, आत्मशुद्धि। शरीर की शुद्धि करने से आयुर्वेद कहता है कि आयु बढ़ती है, इसलिए ब्राह्मण लोग 3 बार स्नान करते हैं, 3 बार गायत्री के बहाने। शरीर को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, वो सत्वगुण का लक्षण है, लेकिन साथ साथ में ना ही निर्मल मन तर काय करेल साबण, ऐसे तुकारा महाराज बोलते हैं। मन में अगर कोई किंतु परंतु विचार द्वेष है तो 50 बार स्नान करने से भी क्या मतलब है, तो मन निर्मल होना चाहिए। तो मन को निर्मल करना है तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। मन को शुद्ध करना है तो आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। शुद्धि बहुत आवश्यक है, जब तक शुद्धि नहीं है तो परम शुद्ध भगवान हमारे चेतना में प्रकट नहीं हो सकते। अस्वच्छ जगह पे परम शुद्ध भगवान अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अगर भगवान आपको हृदय में प्रवेश करने की आपकी इच्छा है, तो आपको मन को, हृदय को, तन को, भावना को, चित्त को शुद्ध करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, शास्त्र में बड़ा वर्णन दिया उसका, कि बुद्धि को शुद्ध करना है आपको, तो आपको ये भगवान के जो विचार हैं शास्त्र पढ़ना चाहिए। बुद्धि के लिए शास्त्र के श्लोक स्नान है, मतलब वो बुद्धि शास्त्र के श्लोकों से बुद्धि को नहलाना है रोज। महात्मा गांधी ने भी लिखा है उसको, कि रोज मैं भगवद गीता के श्लोकों से मेरी बुद्धि का स्नान कराता हूँ और बुद्धि को शुद्ध कराता हूँ। तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ये शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, उससे बुद्धि शुद्ध होती है। सद सद अविवेक बुद्धि निर्माण होती है, यानी क्या आध्यात्मिक है क्या भौतिक है इसका फर्क जानने वाली बुद्धि, जिसको सार असार बुद्धि भी कहते हैं, सद असद विवेक बुद्धि भी कहते हैं, वो निर्माण होती है शास्त्र का अध्ययन करने से और वो सत्संग में प्राप्त होता है ना। फिर मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, मन के तीन विचार हैं, तीन धाराएं हैं मन की, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, विचार करना महसूस करना और सोचना, नहीं सोचना इच्छा करना, इच्छा करना। तो ये तीनों को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। विचार करना है तो भगवान का, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, है ना, तो हमेशा मेरे बारे में सोचना, भगवान बोलते हैं, तो इच्छा का हो गया काम, भगवान की इच्छा कर रहे हैं, भगवान के विषय में इच्छा कर रहे हैं, अनुकूल संकल्प हो भगवान के विषय में कार्य कर रहे हैं। और फीलिंग, भगवान के लिए जो अनुकूल भावनाएं हैं उसको ही ग्रहण करना चाहिए। आपने गाली दिया भगवान के रंग अनुकूल नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान के लिए किसी ने गाली दिया, भगवान के भक्तों को गाली दिया, तो हनुमान जैसा रूप धारण करना चाहिए, तो हनुमान ने लंका भी जला दिया। मतलब जो फीलिंग जो है ना उनकी, वो खुद के लिए नहीं है, फीलिंग जो है उनकी, जो महसूस करते हैं, जो अनुभूति करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान ही अधिष्ठान है उसका। और क्या बताया, थिंकिंग। आप बताइए, हम लोग अभी बैठे ना यहाँ पर, कथा करते हुए भी मेरे मन में कोई कोई विचार चल रहा है बैकग्राउंड में, मैं किस काम से अहमदनगर में आया हूँ और कल मैं क्या कर रहा था, किसी को देखा तो तुरंत वो विचार भी आता है। मैं कथा बोल रहा हूँ, मेरा मन आपके लिए लग रहा है कि मैं कथा ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में और चार विचार चल रहे हैं लाइन्स। तो वो सारे जितने भी मन में ट्रैक चल रहे हैं ना विचारों के, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, एक एक साथ चार चार विचार करते हैं, कर सकते हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। लेकिन वो जब विचारधाराएं भगवान के लिए ही आप मोड़ देते हो, उसको बोलते ना मोल्ड करते हो, उसको एडजस्ट करते हो, उसको बुद्धिपूर्वक सारे विचारधाराएं भगवान के लिए ही आप करने का अभ्यास करते हो, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझको प्राप्ति कर चुका है, ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, जो मन को वश कर चुका है। मतलब जो मन को, जिसने भगवान, मन को वश करने का मतलब यह नहीं कि मैं मन का स्वामी बन गया, मन को वश करने का मतलब यह है कि मैंने वो जब मन न मन मतलब भगवान के चरणों में रख दिया, तो उस स्थिति को भगवान की प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। जिसने अपना मन भगवान में लगा दिया, उसकी थिंकिंग फीलिंग विलिंग भगवान के लिए है, उसने ऑलरेडी भगवान को प्राप्त कर चुका है वो, ऐसे भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में। इसलिए वो शुद्धि जो है मन की आवश्यक है। शरीर की शुद्धि स्नान से है, और हाथ पांव की शुद्धि, हाथ पांव को भगवान की सेवा में लगाना, ये हाथ पांव की शुद्धि है। पंच इंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये हमारे शरीर का हिस्सा है। तो ज्ञानेन्द्रिय के जो नाक कान जितनी माध्यम है, उसमें से प्रसाद खाकर प्रसाद का टेस्ट करना है, बोलना है तो भगवान के लिए बोलना है, सुनना है तो फिल्टर करना है, पर बड़ा फिल्टर लगाना है, जो जरूरी नहीं वो सुनना नहीं है, जरूरी वही सुनना है, देखना वही है जो भगवान के लिए संबंधित है। प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचने ना, सब जगह भगवान को देख रहे हैं, ये दृष्टि की शुद्धि हो गई। ऐसे हर इंद्रिय की, हर इंद्रिय का विषय भगवान होना चाहिए, और पंच कर्मेंद्रिय जो है उनसे भगवान के लिए काम करना है, हाथ पैर कंठ जो है सब भगवान की सेवा में लगाना है, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। साबुन से त्वचा शुद्ध होती है, और ये पंचेंद्रियों का इस्तेमाल करने से भगवान की सेवा में वो शुद्ध होते हैं, और पंच ज्ञानेन्द्रियों का विषय भगवान को बनाने से पंच ज्ञानेन्द्रिय शुद्ध होते हैं, तो आपका शरीर पूरा शुद्ध हो गया। उसके बाद मन शुद्ध का मैंने बताया, बुद्धि का भी बताया, आत्मशुद्धि करना है तो भी भगवान का नाम ही है। ऐसे करने से भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। और अगला है स्वाध्याय। ये सब जो अभी बताया ना मैंने, ये सब स्वाध्याय यही है, नित्य नियम है आपका, कि रोज प्रसाद पाएंगे, रोज भगवान का दर्शन करने मंदिर आएंगे, रोज भगवान का श्रवण करेंगे, जो भगवान के विषय में बोलेंगे, पैर और हाथ और ड्राइविंग हाथ पैर का इस्तेमाल करके मंदिर की ओर आएंगे, हाँ हर प्रकार से नियमित रूप से सेवा करना, उसको स्व अध्याय कहते हैं। यानी कि हमारे 16 माला, चार नियम, प्रसाद खाना, सत्संग में आना और किताब पढ़ना, ये हमारा स्वाध्याय है। और हर जीव को, हर मनुष्य को बिना स्वाध्याय श्रेष्ठ गति प्राप्त नहीं होती है। और लास्ट में पुरुषार्चनम, ये सारा चीज़ पुरुषार्चनम ही है, ये सब चीज़ भगवान के अर्चना के लिए ही है, ये भगवान की अर्चना है। आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, अभी हमारे पंकज नेत्र प्रभु डीटी वर्शिप कर रहे थे, है ना, आप यहाँ पर थे, बाहर खड़े थे, अंदर सब सेवा करके उन्होंने दर्शन खुला, फिर आरती किया, श्रृंगार भी किया होगा शायद, और आप लोगों ने क्या किया, आए और आपने खाली देखा, तब बोलेंगे आपने क्या किया, तो खाली ऐसे आया और खड़े हो गया, मेहनत तो मैंने किया। लेकिन श्रृंगार किए हुए और जिनकी आरती हो रही है ऐसे भगवान का दर्शन करना भी डीटी वर्शिप है, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी। तो आप अगर ब्राह्मण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नित्य नियम से आके भगवान का दर्शन करते हैं श्रृंगार किए हुए, तो वो भी आप भगवान की अर्च विग्रह पूजा ही कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे भागवत में, मैं आपको लास्ट में स्टोरी बताता हूँ, भागवत में एक ऐसा वर्णन है कि भगवान जो है ना, उनके कर पैर तले कुमकुम चंदन अगुरु वगैरह लगाया है, उनके पैर का भी श्रृंगार किया गया है, घुंघरू लगाया है उसके अंदर, उसके अंदर डिज़ाइन बनाया है माता ने, चंदन अगुरु तुलसी लगाई हुई है। और वो वैसे तो चप्पल तो पहनते नहीं ब्रज में, वो नंगे पैर ही घूमते हैं, तो वैसे वो भी चले हैं, चल रहे हैं वन वन में विहार करने के लिए। तो रस्ते में हिरण खड़े हैं और वो ऐसे बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से उनको निहार रहे हैं, ऐसे 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 उनको ही देख रहे हैं, एकदम मग्न है, उनको पता ही नहीं हो कहाँ पर है वो, उनका मुँह खुला है कि बंद है मालूम नहीं, लेकिन नेत्र जो है ना उनका दर्शन करने में पूरी तरह से मग्न है। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वो हिरण, उनके पास ना अगरबत्ती है, ना दीपक है, ना घंटी है, ना मोरपंख है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ तरह की डीटी वर्शिप वो हिरण लोग कर रहे हैं, ऐसे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। इतना सुंदर वर्णन है वो, उनको बता देता है अल्टीमेटली भगवान का पूजन जो है वो क्या है, वो चेतना की स्थिति है, इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। नहीं तो फिर वो ऐसा घुमा रहा है और वो सोच रहा है मैं ब्रह्मचारी हूँ अभी, मुझे विवाह करना है, कौन सी भरत लड़की मिलेगी, या मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे अभी वो वीज़ा मिला हुआ है और मुझे वहाँ पुजारी का नौकरी मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा, हो सकता है ना पॉसिबल, मन में कितने 50 विकल्प आ सकते हैं। और घर में कोई गृहस्थ पूजा कर रहा है, बोले भगवान क्या बोलते हैं वो तो क्या बोलते हैं, सुख सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, आरती हो रही है ना। मतलब क्या, वो कर ही रहा है इसके लिए कि भाई करो भगवान, दीपक घुमा रहा हूँ घी लगा के, कुछ अच्छा बिजनेस हो जाए तो अच्छा है आज, है ना। और वो भी खुद के लिए मांग रहा है, बस सुख संपत्ति आए, मेरे लिए आए, मेरा कष्ट मिट जाए, तुम्हारा संतुष्टि हो जाए, नहीं वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा मैं आरती घुमा रहा हूँ, उसका 6 कला अर्पण कर दिया है, मेरा पूरा काम कर दो आप। ये पुरुषार्चना नहीं है, पुरुषार्चना मतलब आपके लिए की गई, मुझे आनंद, मेरा कष्ट मिटे या ना मिटे आपको सुख मिलना चाहिए, ये पुरुषार्चना है। ये अपना आप केवल यहाँ पर खड़े रहकर 7 मिनट के लिए पूजा कर रहे हो, आपका 24 घंटा पूजा हो सकती है, 24 आवर्स आप पूजन में ही लग सकते हो, ऐसा कार्य करो जो भगवान के संतुष्टि के लिए, आप बिजनेस कर रहे हो और घर संभाल रहे हो और बच्चे को जन्म दे रहे हो, वो सारा पूजन हो सकता है अगर आपकी चेतना सही जगह पर है। और यही भक्ति की गहराई के प्रिंसिपल है। वो महाराज क्या बोले हमारे गुरुदेव को हिमालय में, चलते फिरते उठते बोलते सोते खाते पीते कार्य करते हुए भगवान के नाम का चिंतन और उनके सुख का विचार मन में चलते रहना चाहिए, जो भी कर रहा हूँ उनके सुख के लिए कर रहा हूँ, अपना सुख की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपना सुख जो उनकी सुख की चिंता करता है उसके सुख की चिंता भगवान को होती है, उसको सेपरेटली खुद के सुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। कितने उदाहरण शास्त्र में ऐसे। तो ये सारे तत्व जो है इतने सुंदर तरीके से कपिल मुनि भगवान अपनी माता देवाहुति को बता रहे हैं, आगे भी बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, इसके पहले का भी दिया गया है, श्रेष्ठतम तत्व जो है वो बता रहे हैं। और हमारा भाग्य है कि देवाहुति माता जो ना, मैं पहले प्रभु जी को बता रहा था कि देवाहुति माता का चरित्र इतना श्रेष्ठ है, लेकिन आप उनके प्रश्न पढ़िए, क्या प्रश्न पूछ रही है, एकदम सामान्य प्रश्न पूछ रही है, तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी महान भक्त जो है, इतनी कन्विक्शन है उसके अंदर, इतनी श्रद्धा है, तो फिर भी वो ऐसे कैसे प्रश्न कर रही है, मतलब वो नौसिखिया है कि एडवांस है, क्या है क्या वो। अरे वो आपके लिए प्रश्न पूछ रही है, हमारे लिए प्रश्न पूछ रही है, ताकि जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक हम सब लोग उन प्रश्नों का उत्तर मिलते रहे और हमारी भक्ति की वृद्धि होती रहे। अर्जुन भी इतने बड़े थे, अभी इतनी उनका इतिहास अर्जुन का है, तो उनको क्यों, उनके प्रश्न देखिए कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, ऐसा युद्ध मुझे नहीं करना है, नहीं तो बच्चे जैसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपका, बोला मैं उनसे अच्छा हूँ ऐसा लगेगा आपको लेकिन अर्जुन आपके लिए हमारे लिए वैसे बन रहे हैं ताकि हम जैसे लोगों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिले, इसलिए वो भगवान ने उसको पात्र बना दिया, नहीं तो वो जरूरत नहीं थी उनको, वो तो पूरा आर्य है, वो आर्य। और भगवान ने उसको अनार्य रूप में संबोधित किया है, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, तुम अनार्य बन रहे हो, तुम आर्य होते हुए ऐसे मूर्खी, गतासु न गतासुमश्च नानु शोचन्ति पंडिता, ऐसे पंडित की तरह बड़ी बड़ी बातें करोगे, मूर्ख गधे की तरह बात कर रहे हो आप, ऐसे भगवान उसको बोल सुना रहे हैं, खड़े बोल क्यों सुना रहे हैं, हमारे लिए सुना रहे हैं, वो स्थिति उन्हें हमारे लिए स्वीकार की है। तो देवावती भी प्रश्न पूछ रही, सामान्य प्रश्न पूछ रही है, वो हमारे लिए पूछ रही है, ताकि भगवान के मुख से तुमको और हमको जवाब मिले उसका, भगवान को उद्युक्त कर रही है वो, हमारे प्रश्नों का भगवान के मुख से उत्तर प्राप्त कराने के लिए वो ये सब प्रश्न पूछ रही है। हमको उनका रेडी होना चाहिए, अर्जुन का, देवावती का, यहाँ पर प्रश्न करने वाले हर भक्त का, क्योंकि वो जन कल्याण के हेतु से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे महाप्रभु जी ऐसे बम्बई में एक भक्त हैं, महाप्रभु दास जी, वो हर कथा के बाद प्रश्न करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं, महाप्रभु जी 30 साल के बाद भी ये प्रश्न कर रहे हैं आप, 30 ईयर्स के बाद भी, वो दूसरों के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जो जिनको उन्होंने बुलाया है कथा में आज, उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न कर रहे हैं, कि उनके मन के प्रश्न उनको पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो ये पूछ रहे हैं उसके लिए, ताकि बिना पूछे उसका उत्तर उनको मिल जाए, तो उनका कल्याण हो जाए, इसमें मैं जोकर बन रहा हूँ, वो प्रश्न पूछ के, लेकिन फिर भी वो परवाह नहीं करते उसकी, ये परहित है, ये परमार्थ है, ये डोंट केयर फॉर देमसेल्फ, लोग हंस रहे नहीं कर रहे, वो अपने काम में लगे हुए हैं। सुखदेव जी आ रहे थे ना कथा सुनाने के लिए, तो बच्चे पत्थर मार रहे थे उसके ऊपर, और सुंदर ऐसा यौवन शरीर, इतना दिव्य शरीर था उनका, उनको देख के कुछ कन्याएं पीछे भाग रही है उनकी, और लड़के उनको पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो सब चीज भगवान की कृपा ही मान रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विरक्त है पूरे। जब वो जाके व्यासस में बैठ गए तो बच्चे और वो लोग लेडीज सब भाग गए, बोले अभी तो हरी है तो बड़े महात्मा है, तो सब इतने नारद मुनि वगैरह आके उनका सत्कार कर रहे हैं, व्यासन में बिठा रहे हैं उनको, हमने उनको पत्थर मारकर वासना की थी उनके ऊपर, सब भाग गए वो, लेकिन सुखदेव जी को ना पत्थर पड़ते हुए फर्क पड़ा, ना आसन पे बैठने के बाद में उनका गुब्बारा फूक गया, दोनों तरफ से कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना सम्मान मिला तभी वो फूक गए, ना जब पत्थर गिरे तभी वो दुखी हो गए, क्योंकि वो भगवत चरण में लीन व्यक्ति है। और ये अवस्था केवल सुखदेव महाराज की है, हम नहीं कैसे हो सकते, ऐसा नहीं है, हम भी उस अवस्था में जा सकते हैं, भजन करने की विधि को जो अपनाएगा वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। आपका मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ भगवान में 24 घंटे के लिए लीन हो सकता है, अगर आप वैसा जीवन चाहते हो नंबर वन, और चाहने के बाद में वैसे जीवन का प्रयास करते हो तो वो जीवन आपका भी हो सकता है। डोंट थिंक कि वो अर्जुन और देवाहुति ही कर सकते हैं, वो आप लोग भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। निश्चय होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए पहले कि मुझे चाहिए, तब होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। कितनी बढ़िया बात है, मैं इतना घंटे बात कर रहा हूँ लेकिन एक आदमी भी सोया है नहीं इसके अंदर, सब सुन रहे ध्यान से। ये भागवत का भी एक रहस्य है, भागवत के एंड में भी परीक्षित महाराज प्रश्न करते जा रहे हैं, और बैकग्राउंड क्या है उसका, भागवत का एंड का मतलब क्या, अभी 7वां दिन शुरू हो गया है और ये आदमी 6 दिन 6 रात कुछ सोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ लघु शंका बड़ी शंका कुछ नहीं किया उसने, तो कितना थका होना चाहिए। समझो एक कथा समझो 7 दिन चलती आई बिना खाए पिए, प्रसाद नहीं कुछ नहीं बीच में, तो 7वें दिन में तो पता नहीं लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, या रहेंगे तो सोते रहेंगे, पता नहीं क्या होगा उस समय, IV लगाया होगा उनको, सलाइन लगाया होगा, आई डोंट नो, है ना। 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए, धूप गर्मी सर्दी ठंडी रात की चल रही है कथा उसके अंदर, बताओ तो आप क्या उम्मीद करते हो कि 7वें दिन तो श्रोता बोलेगा ठीक है महाराज आप बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ मैं जगा हूँ, यही आपकी बड़ी 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 प्राप्ति है, बड़ी अचीवमेंट है, आप बोलते रहो। नहीं, वो पूछ रहे हैं प्रश्न और पूछ रहे हैं, तो उसको देखकर वो वक्ता ने भी नहीं खाना खाया है, ऐसा नहीं कि वक्ता भी बीच बीच में शरबत पीता था, ऐसा नहीं था, बोले वो बोलने वाले उनको तो बीच में सप्लाई करना चाहिए, नहीं वो भी ऐसा ही है, तो हो सकता है उनको भी नींद आनी चाहिए, उनका भी बोला अभी गले में तो कंठ में शक्ति नहीं बची, आवाज़ कहाँ से निकलेगी, नहीं वो भी वैसे ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी 7वें दिन भी आप देखिए जब कृष्ण कथा चल रही है, जब 11वां स्कंद चल रहा है, प्रश्न पूछते जा रहे हैं वो, तो बार बार लगातार सुखदेव जी परीक्षित को धन्यवाद देते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका कि आप 7वें दिन पर भी प्रश्न कर रहे हैं, आपका उत्साह सुनकर मेरा बोलने का उत्साह विघटित हो रहा है। तो कथा कब अच्छी निकलती है बताओ, जो सुनने वाले सुनने के मूड में रहते हैं, तो कथा वाले को भगवान शक्ति देते हैं और उसके मुंह से आपके लिए जो आपको जो चाहिए, जिसकी आपको भूख है, वो आपको खिलाते रहते हैं। तो कथा यशस्वी होती है कभी मालूम है? वक्ता के ज्ञान की वजह से नहीं होती। कथा यशस्वी होती है श्रोताओं के वजह से। श्रोता मुमुक्षु अवस्था में, उत्सुक अवस्था में खड़े बैठे रहते हैं तो कथा भी, कथाकार भी खाना पीना रहना भूल जाता है और भगवान उसके मुंह से बोलते रहते हैं। तो आप लोगों की जय जयकार हो और आप लोगों की धन्यवाद है और अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जी, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वसिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूँ। तो प्रश्न ये है कि सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं? सिद्ध पुरुष उसको कहते हैं जिसका शरीर पंचकर्मेंद्रिय, पंचकाम ज्ञानेन्द्रिय, मन की तीन अवस्थाएं, बुद्धि की अवस्था, चित्त की अवस्था सब भगवान में लीन रहती है, उसको सिद्ध कहते हैं। 100% जिसका अस्तित्व सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा जो भगवान में लीनता है, उसको सिद्ध पुरुष कहते हैं। सब कुछ कार्य करना है भगवान के सुख के लिए, लेकिन कैसे समझे कि भगवान का सुख क्या है? इसका उत्तर मैंने परसों भी दिया था। भगवान तो आपको आके बताएंगे नहीं कि मैं सुखी हूँ आपसे। जैसे आपने भी पूजा किया, भगवान ने बताया कि आपको बहुत अच्छा अर्थ किया आपने, लेकिन किसी भक्त ने बताया, बता सकते भक्त आपको आपने बड़ा अच्छा अर्थ किया, श्रृंगार बड़ा बढ़िया किया है। तो भगवान हमारी सेवा से खुश है कि नहीं, ये हमको केवल भक्त बता सकते हैं। इसलिए भक्तों से पूछो आप, सब लोग नहीं बता सकते तो एक अपना शिक्षा गुरु बना लो और उसी को पूछते रहो और वो आपको बताएगा। हाँ, इसलिए अब अगर दशम स्कंद में बताता हूँ, व्हाट्सएप में देख बताता हूँ। दशम स्कंद में जब वसुदेव जी आते हैं ना कुरुक्षेत्र पर सूर्य ग्रहण के समय, तब उसके बाद सब लोग स्नान करते हैं और उसके बाद वसुदेव एक यज्ञ करने का निर्णय करते हैं और यज्ञ करने के लिए सारे ऋषि मुनि महान 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 ऋषिगणी वहाँ पर प्रकट होते हैं। तब भगवान ने स्वयं अपने मुख से सत्संग की महिमा बताई है। ऐसी महिमा आज तक किसी भी शास्त्र में किसी भी मुनि ने, किसी भी ऋषि ने नहीं की है, क्योंकि कर ही सकता नहीं, वो भगवान ही बोल सकते हैं वो बातें। तो भगवान ने उसमें बताया है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का जो संग है वो भगवान के विग्रह की पूजा करने से श्रेष्ठ है। तो क्यों? क्योंकि आप उनको सेवा करेंगे तो विग्रह आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन भक्त आपको बोलेंगे ये तुमने गलत किया है, इसको ठीक करो। इसलिए अगर दो वक्त दो चीज़ की तुलना करनी है, अगर आपको दो में से एक ही कर सकते हो आप, तो भगवान के विग्रह की पूजा करने से भक्तों के संग में संग करना श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि भक्त आपको बताएंगे कि आपकी सब्जी में नमक ज़्यादा था आज, लेकिन भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान ऐसे वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो आपको सब सर्विस करेंगे। आपको होता है ना ऐसे कभी भगवान को आपने तीखा मसाले वाला कुछ कुछ गलत डाल के नमक ज़्यादा, ऐसा हम देखते हैं हमेशा कि सबसे अधिक एक्सपेरिमेंट भगवान पे होते हैं। माताएं है मुझे स्वीकार करेंगी इस बात को, नहीं करेंगी, क्योंकि वो बेचारे कुछ बोलते नहीं है। इसलिए हमारे मंदिर भगवान भक्ति विधान हॉस्पिटल में क्या किया हम लोग ने कि जो भगवान के भोग बनता है ना उसका एक सैंपल प्लेट मेरे पास आता है और किसी दो आदमी के पास पहुँचता है और हम उसका अभिप्राय देते हैं कि इसमें तो नमक डाला ही नहीं आज, ये पकौड़ा कच्चा ही निकला, तो भगवान ने तो स्वीकार कर लिया। लेकिन हम बता रहे ना, कल नहीं होना चाहिए ऐसा। तो भक्त बता सकता है आपकी सेवा में त्रुटि है कि आपने परफेक्ट किया है, लेकिन विग्रह नहीं बोल सकते। हम लोग इतने सिद्ध नहीं हुए कि विग्रह हमसे बोलेंगे। सनातन जी से बात करते थे, वो क्या तुम नमक के बिना दे रहे हो, क्या कुछ तो कुछ करो। हमसे नहीं बोलेंगे, हम थोड़ी इतने सिद्ध हैं, शायद वो खाएंगे नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, लेकिन इन भक्त बताएगा आपको। इसलिए अगर आपको भगवान सुख है, सुखी है कि नहीं है, अगर पता चलना है भक्तों से पूछो हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होते आए कि नहीं कैसे समझाए से वही उत्तर है उसका भी, उसका भी उत्तर यही है, भक्तों से पूछो, भक्तों की सलाह लो, वही बताएंगे आपको। और जब सलाह देंगे तो शॉपिंग करते हुए मत ढूंढो कि जो मेरे लिए अच्छा जवाब देगा वो अपना शिक्षा गुरु, आज इन्होंने अच्छा उत्तर दिया तो ये शिक्षा गुरु आज मेरे, कल उन्होंने कड़क उत्तर दिया तो ये नहीं, अभी दूसरे के पास आएंगे। जब तक अच्छा उत्तर नहीं मिलेगा मेरी सेवा के प्रति तब तक मैं शॉपिंग करते रहूँगा ऐसे नहीं बनाए। जब एक भक्त को आप चुनते हो तो उसी को पकड़ के रखो और उसी को पूछो, तो हर बार आपको प्रामाणिक उत्तर देगा और उसमें आप खुद की खुशी पर देखो कि हाँ मुझे अच्छा लगना चाहिए, ऐसा जवाब कोई देगा ना वो मेरा शिक्षा गुरु होगा। आपको बुरा लगे ऐसा जवाब देने की हिम्मत जिसमें है ना उसको शिक्षा गुरु बनाओ, क्योंकि वो आपका हित चाहता है, वो आपको गुड़ी गुड़ी आपको मस्का पॉलिश करने के लिए बैठा नहीं है, वो आपके कल्याण के लिए बैठा है। तो वही आपको बताएगा, वो हिम्मत करके बताएगा ये गलत है इसको मत करो, वो आपका शिक्षा गुरु, वो आपके लिए आपको आपसे डोनेशन लेना है उसको, या आपके घर में गा के प्रसाद पाना है उसको, या आपको द्वारा उसको कुछ अचीवमेंट करना है तो वो सब गुड़ी गुड़ी हाँ हाँ अच्छा अच्छा ही कर रहे हैं, वो आपका शत्रु है, शिक्षा गुरु नहीं है आपका। शिक्षा गुरु वो है जो खुद के बारे में बुरा सोचने वाला स्थिति आने पर भी आपके लिए वो अच्छा ही बताएगा, वो परवाह नहीं करेगा, हू डजंट केयर। तो उस भक्त को पूछो और वैसे भक्त को रखो, सड़े तोड़ बोलणारा भक्तासेल ना त्याला ठेवा शिक्षा गुरु म्हणून, आणि त्याची त्याच्याकडून जे काय तो बोलले त्याची ऐकायची तयारी पण ठेवा आणि त्याच्याप्रमाणे सुधारायची पण तयारी ठेवा। नुसतात फक्त गुडी गुडी हले हो हरे कृष्णा गुड थँक यू आय एम गुड यू गुड ऐसा मत करू। येस सगळ्या गोष्टी जगातल्या ज्या ज्या गोष्टी भक्तीला अनुकूल आहेत या तुम्ही करू शकता। आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम ही शुद्ध भक्तीची व्याख्या आहे ॲज पर रूप गोस्वामी। जगातल्या कुठच्याही प्रक्रियेचा कुठच्याही वस्तूचा तुम्ही शुद्ध भक्तीकरता लाभ घेऊ शकता। आता मी कशाकरता आलो अहमदनगरमध्ये, एक गादी बनवण्याकरता आलो आहे अहमदनगरमध्ये, तर तुम्हाला वेळात काढाल, मुंबईत काय गादी बनत नाही का? पण सकाळी उठल्यावर जी पाठ दुखते त्याच्याने मग जप नीट नाही होत, त्याकरता आता अशी गादी मला पाहिजे झुपल्यावर सकाळी उठल्यावर पाठ दुखली नाही पाहिजे आणि लगेच चांगला जप झाला पाहिजे, म्हणून पुन्हा आलो गादी बनवायला। तर मुंबईतल्या माझ्या मित्राने मला वेळात काढलं, हो गादी बनवायला गेले अहमदनगर जा रहा आहे मला आहे ऐसा मी काय करू। सो अनुकूल्याचे संकल्प भक्ती करता जे अनुकूल असेल ते करावं, नाहीतर नाही करावं असं आहे। ठीक आहे, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम।